आगे देखिए भाई सबक, वलम्मा कान मिन खसाइसिन निदाई तरखीमु शरअ फी बयानिही फकाल व तरखीमुल मुनादा जाइज़ुन ऐ वाक़िउन फी सअतिल कलाम मिन गैरि ज़रूरतिन शिअरियतिन दअत इलैही फइन दअत इलैही ज़रूरतुन फबित्तरीक़िल औला وهو في غيره أي غير المنادى واقع ضرورة أي لضرورة شعرية داعية إليه لا في سعة الكلام. گزشتہ سبق میں کچھ خاص قسم کے جو منادا تھے ان کے احکام ذکر فرما رہے تھے صاحب کافیہ. صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا कि या तैम तैम आदियन जैसी तरकीबों के अंदर ये जो पहला तैम है इस पर जम्मा भी जायज है और नसब भी जायज है, जबकि दूसरा तैम जो है उस पर सिर्फ नसब पढ़ेंगे. तो कैसे पढ़ सकते हैं, या तैम तैम आदियन, या पहले पर भी फतहा पढ़ो या तैम तैम आदियन. और इस जैसी मिसालों से मुराद ऐसी तरकीबें हैं जिनके अंदर मुनादा मुफरद मारिफा सूरतन मुकर्रर वाकया हो भाई, और जो दूसरा है यानी जो ताकीद है उसके बाद एक इसम वाकया हो जो मजरूर हो इजाफत की वजह से. तो इस किस्म के मुनादा में पहले लफ्ज पर जम्मा और नसब दोनों जायज हैं. जम्मा इसलिए क्योंकि वो मुनादा मुफरद मारिफा है, और मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वह मबनी अला जम होता है, और दूसरा जो है वो मंसूब होगा क्योंकि वो मुजाफ है आदियन की तरफ. और मुनादा जब मुजाफ हो तो वो मंसूब होता है, तो उसकी जो ताकीद आ जाए जो उसका ताबे आ जाए वो बतरीके औला मंसूब होगा. और पहले तैम पर नसब इसलिए जायज है क्योंकि ये पहला तैम मुजाफ है इसी आदिये मजकूर की तरफ इमाम सीबवे के नजदीक. तो पहला तैम मुजाफ है और मुनादा मुजाफ हो तो मंसूब होता है, और इसी तरह उसकी जो ताकीद है वो भी मंसूब होगी. और इमाम मुबर्रिद फरमाते हैं कि जो पहला तैम है वो आदिये महजूफ की तरफ मुजाफ है, और ये सानी आदि उस पर करीना है. ये सानी आदि बतला रहा है कि पहले तैम का मुजाफ महजूफ है. तो पहले तैम पर जम्मा और नसब दोनों जायज, जबकि सानी पर नसब ही पढ़ेंगे भाई. और फिर ये भी आपको बतलाया था कि वो मुनादा जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ उसके अंदर चार वजहें पढ़ना जायज हैं, या के सुकून के साथ, या गुलामी. देखो गुलाम मुनादा है जो मुजाफ है या मुतकल्लिम की तरफ, तो इस या को साकिन पढ़ना भी जायज या गुलामी, और इस या पर फतहा पढ़ना भी जायज या गुलामिया, और इस या को हजफ करना और माकबल वाले कसरा पर इक्तफा करना भी जायज है. लेकिन ये उसी वक्त होगा जब या से माकबल कसरा हो, जैसे या गुलामी. देखो या को गिरा दिया और मीम का कसरा बतला रहा है कि यहां या हजफ हुई है, इसलिए क्योंकि अगर या न होती तो या गुलाम फिर तो इसको मबनी अला जम होना चाहिए था, क्योंकि मुनादा मुफरद मारिफा हो तो मबनी अला जम होता है. तो यहां पर ये मीम का कसरा बतलाएगा कि यहां से या हजफ हुई है, और अगर या से माकबल पर कसरा ना हो फिर या को गिराना जायज नहीं. जैसे या फता, या फतन जवान को कहते हैं, ये इसमें मकसूर है भाई. तो या फता, या अब यहां से अगर या को हजफ कर देंगे तो या फता ये बाकी रह जाएगा, और फिर पता नहीं चलेगा कि यहां से या हजफ हुई है. और इसी तरह चौथी सूरत यह है कि उस या को अलिफ से बदल दिया जाए, या गुलामा. और साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि बाज औकात इस अलिफ को भी हजफ कर लिया जाता है और सिर्फ फतहा पर इक्तफा कर लिया जाता है या गुलामा, लेकिन यह शाज है, यह शाज है. और यह भी आपको बतलाया था कि यह चार वजहें जो हैं उस मुनादा के अंदर जायज हैं जिसकी अक्सर इजाफत की जाती हो या मुतकल्लिम की तरफ, और वो इस इजाफत के साथ मशहूर भी हो गई. अगर अक्सर उसकी इजाफत या की तरफ नहीं की जाती फिर उसमें इस तरह पढ़ना जायज नहीं है. जैसे या अदुवी, आप या को हजफ कर दें, या अदुवा, आप या को अलिफ से बदल दें, यह जायज नहीं है, बल्कि यहां या अदुवी ही कहना पड़ेगा. और साहिब काफिया ने आपको बतलाया था कि ये जो चार वजह हैं इनमें से आखिरी दो वजह मुनादा के अंदर कसीर हैं, यानी या को हजफ कर लेना और माकबल के कसरा पर इक्तफा करना और या को अलिफ से बदल देना, ये कसीर हैं। और मैंने आपको एक और फायदा भी बतलाया था कि जो भी इसम या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो जाए तो वहां पर भी या को दोनों तरह पढ़ सकते हैं, या को साकिन भी पढ़ सकते हैं और या पर फतहा भी। किताब की इजाफत आप या की तरफ करते हैं तो किताबी या को साकिन पढ़ें या पर फतहा पढ़ें, किताबी या दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तो जहां कहीं भी कोई इसम मुजाफ हो जाए या मुतकल्लिम की तरफ, वहां दोनों तरह या को पढ़ सकते हैं, साकिन भी और उस पर फतहा भी। फिर उसके बाद बतलाया था कि इन्हीं के साथ वक्फ की हालत में हा को भी जोड़ देते हैं, या गुलामीह या गुलामीह या गुलामीह या गुलामाह, ताकि फर्क हो जाए वक्फ और वसल के दरमियान। तो वक्फ की हालत में हा भी जोड़ सकते हैं भाई। और फिर आगे बतलाया था कि या अबी व या उम्मी, ये तो सबसे ज्यादा कसीरुल इस्तेमाल हैं, लिहाजा इनमें भी ये चार वजह भी जायज और तीन वजह इनके अंदर और भी जायज हैं। पहली चार वजह कौन सी? या अबी या उम्मी, या को साकिन पढ़ा या फिर या पर फतहा पढ़ें, या अबी या उम्मी या को हजफ कर दें या अबी या उम्मी, या को अलिफ से बदल दें या अबा या उम्मा। इसके अलावा इस या को ता से बदलना भी जायज है, या अबती या उम्मती, और इस ता पर फतहा और कसरा दोनों जायज हैं, कसरा भी या अबती या उम्मती और फतहा भी या अबता या उम्मता। तो या को कभी कभार ता से बदलते हैं और कभी अलिफ से, तो दोनों को भी यहां जमा करना जायज है, दोनों इवज जो हैं या के उनको भी जमा करना जायज है। या अबता, देखो ता और अलिफ दोनों ले आए, या उम्मता, लेकिन ता और या को जमा करना जायज नहीं। आप यूं नहीं कह सकते या अबती या उम्मती, भाई क्यों नहीं कह सकते? वजह यह कि यह ता इवज है या का, और हालांकि या तो खुद मौजूद है, और इवज और मुआवज अनहु दोनों का जमा करना जायज नहीं, दोनों में से एक आ सकता है। तो लिहाजा ता और या, ता इवज है और या मुआवज अनहु है, दोनों को जमा करना जायज नहीं। लिहाजा आप यूं नहीं कह सकते या अबती और या उम्मती। और एक और वजह भी इन्होंने आपको बतलाई थी कि इस ता के अंदर जम्मा भी जायज है, या अबतु या उम्मतु, लेकिन उसको साहिब काफिया ने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो निहायत कलील है भाई, और कलील का कोई एतबार नहीं भाई, उसको मादूम शुमार किया जाता है। और फिर आपको बतलाया था यबना उम्मी और यबना अम्मी, ये इसमें खास तौर पर इनमें भी बाबे गुलामी की तरह चार वजहें जायज हैं, हालांकि इसमें पहले या गुलामी उसके अंदर तो मुनादा मुजाफ था या मुतकल्लिम की तरफ, लेकिन यहां यबन उम्मी, मुनादा तो इबन है और वो तो या की तरफ मुजाफ नहीं है, वो तो की तरफ मुजाफ है, और फिर जो है वो या की तरफ मुजाफ है, तो ये या गुलामी की तरह नहीं, और या गुलामी में तो चार वजहें जायज थी, इसमें चार वजहें जायज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये कसीरुल इस्तेमाल हैं, अरब हर एक से बात करते हुए क्या कह देते हैं, यबन उम्मी यानी ए मेरी मां के बेटे, यानी ए मेरे भाई भाई, जिससे भी बात कर रहे हो, चाहे भाई है चाहे नहीं है, बतौर मोहब्बत के यबन उम्मी कहते हैं, या यबन अम्मी ए मेरे चचा के बेटे। तो चूंकि ये भी कसीरुल इस्तेमाल हैं, इसलिए इनके अंदर भी वो चार वजहें पढ़ना जायज हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? यबन उम्मी, और इसी तरह यबन अम्मी, या को साकिन पढ़ा या पर फतहा पढ़े, यबन उम्मी यबन अम्मी या को गिरा दें, या बना उम्मी या बना अम्मी, या को अलिफ से बदल दें, या बना उम्मा या बना अम्मा। और इनके अंदर एक पांचवी वजह भी जायज है कि अलिफ को गिराकर सिर्फ फतहा पर इक्तफा कर लिया जाए, वो वजह जो या गुलामी के अंदर जो वजह शाज थी, यानी या गुलामा यूं पढ़ना शाज था, लेकिन वो यहां शाज नहीं, वो यहां पर जायज है। वजह यह कि लफ्ज बड़ा लंबा हो गया, पहले मुजाफ आया, फिर आगे एक और मुजाफ आया और फिर आखिर में या मुजाफिले आई, तो तीन लफ्ज आ गए, तो लफ्ज लंबा हो गया था और नीस कसरत इस्तेमाल की वजह से, और नीस यहां पर तज़ईफ भी है, मीम मुशद्दद है, उम के अंदर भी मीम मुशद्दद और आम के अंदर भी मीम मुशद्दद और तज़ईफ भी सिकल पैदा करती है, तो इन तीन वजहों की वजह से यहां पर अलिफ को हजफ करना और सिर्फ फतह पर इक्तिफा करना जायज है। और साहिब काफिया ने आपको यह भी बतलाया था कि यह जो इख्तिसास है यबना उम्मी और यबना अम्मी के अंदर, वो ये मुजाफ यानी उम और आम की नस्बत से कहा कि यह खास तौर पर इसमें यूं कहेंगे, यानी उम या आम की जगह कोई और लफ्ज ले आओ, मसलन अख ले आओ यबना अखी, या खाल ले आओ, खाल मामू को कहते हैं, या बना खाली, इनके अंदर ये चार वजहें पढ़ना जायज नहीं। हालांकि देखो इबन वही लफ्ज है लेकिन सिर्फ मुजाफिले यानी उम और आम को बदला, तो अब चार वजहें जायज नहीं। अलबत्ता इबन के एतबार से इख्तिसास नहीं है क्योंकि इबन की जगह बिंत भी ले आए फिर भी वही चार वजहें जायज हैं, या बिंत उम्मी, या बिंत उम्मी, या बिंत उम्मी, या बिंत उम्मा। सूरत समझ में आ गई जी। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं वलम्मा काना मिन खसाइस निदाए तरखीम शरअ फी बयानिही फकाल व तरखीमुल मुनादा जाइज। भाई अब तरखीम का बयान करने लगे हैं। तरखीम रखम युरखीम, तरखीम अरबी जुबान में इसका माना है नरम करना, नरम करना, किसी चीज को नरम बना देना। और उलमाए नहव की इस्तेलाह में तरखीम इसे कहते हैं के मुनादा या इसी तरह किसी इसम के आखिर से एक दो हर्फ को खत्म कर देना, गिरा देना। मसलन मालिक, मालिक जो है एक शख्स का नाम है, आप उसको निदा देना चाहते हैं तो आप आखिर से काफ को उड़ा देते हैं, या मालिक। या आपके एक साथी का नाम मंसूर है, आप आखिर से वाव और रा दोनों खत्म कर देते हैं, या मंसू, देखो वाव और रा को गिरा दिया, खत्म कर दिया। या आपके साथी का नाम हारिस है भाई, आखिर से आपने सा को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, या हारी, इसको तरखीम कहते हैं। किसी इसम के आखिर से कोई हर्फ खत्म कर देना, गिरा देना, इसको क्या कहते हैं, तरखीम भाई। और याद रखना ये जो तरखीम है ये मुनादा में भी होती है, गैर मुनादा के अंदर भी, लेकिन गैर मुनादा के अंदर सिर्फ जरूरत शेरी की वजह से होगी, यानी सिर्फ अशार में जायज है। मुनादा के अंदर आम कलाम, मुनादा जब किसी को आप निदा देते हैं, देखो ये अशार तो नहीं है, ये तो आम कलाम है, आप किसी को निदा दे रहे हैं, तो मुनादा के अंदर आम कलाम के अंदर भी तरखीम जायज है, जबकि आम कलाम में किसी और इसम के अंदर तरखीम जायज नहीं। और जरूरत शेरी की बिना पर बाकी असमा के अंदर भी तरखीम जायज है, मुनादा के अंदर भी, क्योंकि मुनादा के अंदर जब आम कलाम में तरखीम जायज है तो अशार में बतरीके औला जायज होगी। भाई बात समझ में आ गई, तो तरखीम मुनादा में आम कलाम में भी जायज और अशार में भी जायज, जबकि बाकी असमा के अंदर तरखीम सिर्फ अशार में जरूरत शेरी की वजह से जायज है। जरूरत शेरी भाई मैं कई मरतबा जिक्र कर चुका कि अशार के अपने मखसूस औजान होते हैं, एक हर्फ इधर उधर हो जाए तो पूरे शेर का वजन खराब हो जाता है, तो अशार में जरूरत पड़ती है वजन को बरकरार रखने के लिए, बाज औकात ऐसी चीज का इर्तिकाब करना पड़ता है जो आम कलाम में जायज नहीं, तो उसको जरूरत शेरी कहते हैं, यानी शेर की में जरूरत की वजह से उसके वजन को बरकरार रखने के लिए एक तब्दीली की गई, उसको जरूरत शेरी कहते हैं। जैसे जरूरत शेरी की वजह से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ दिया जाता है, मसलन नौमान भाई, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम है नौमान भाई, और ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि आखिर में अलिफ नून मजीदतान है, ये अलम भी है और अलिफ नून मजीदतान भी हैं, लेकिन शेर के अंदर इसको मुनसरिफ पढ़ा गया। आइद जिक्र नौमानिल्लाना फइन ज़िक्रहू हुवल मिस्कु मा कररतहू यतज़व्वउ। तो देखो यहां पर आइद जिक्र नौमान, देखो नून के नीचे कसरा भी आया और तनवीन भी आ गई, हालांकि गैर मुनसरिफ पर तो कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। वजह यह कि यहां जरूरत शहरी की वजह से इस गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पड़ा गया। तो अशार में बहुत सी ऐसी चीजों का इर्तिकाब किया जाता है जो आम कलाम में जायज नहीं, और उसको क्या कहते हैं, जरूरत शेरी कहते हैं। तो तरखीम, तरखीम मुनादा के अंदर आम कलाम में भी जायज और अशार में बतरीके औला जायज, जबकि बाकी असमा में सिर्फ अशार में जायज है, जरूरत शेरी की वजह से वैसे जायज नहीं भाई। तो तरखीम किसे कहते हैं, किसी इसम या मुनादा के आखिर से एक दो हर्फ या एक कलीमा वगैरह गिरा देना, इसको कहते हैं तरखीम। देखो रखम युरखीम, तरखीम का माना है नरम करना, और लफ्ज के अंदर आप जानते हैं जितने हरूफ कम होंगे जुबान पर वो आसानी से अदा होगा, और जितने हरूफ बढ़ते जाएंगे उसकी अदायगी जुबान पर दुश्वार होती चली जाएगी। तवज्जो है, तो जब आप एक दो हरूफ उड़ा देंगे, गिरा देंगे, या एक पूरा कलीमा गिरा देंगे आखिर से, तो देखो उसकी जुबान पर अदायगी आसान हो गई, उसको आपने नरम बना दिया, तो इसको कहते हैं तरखीम भाई जी। पहले जरा मतन मतन देखिए, कहते हैं वह तरखीम उल मुनादा जायज, उन मुनादा की तरखीम जायज है भाई। वह हुआ फी गैर ही जरूरतन, और ये जो तरखीम है गैर मुनादा के अंदर जरूरतन, जरूरत की वजह से होती है। किसकी वजह से, जरूरतन, ये मफूल लहू है, मफूल लहू माकबल की इल्लत बयान करता है। जरबतुहू तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की, किस लिए, तादीबन अदब सिखाने के लिए। तो यहां पर जो जरूरतन मंसूब है, क्यों मंसूब है, यह मफूल लहू है। वह हुआ फी गैरी ही, और यह तरखीम जो है गैर मुनादा में होती है, जरूरतन, किस वजह से, जरूरत की वजह से, यानी जरूरत शेरी की वजह से। अब तरखीम कहते किसे हैं, वो आगे फिर तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं वह हुआ हसफुन फी आखिरी ही तखफीफन। तरखीम जो है वो मुनादा के आखिर से हजफ करना, तखफीफन, किस लिए, तखफीफ के तौर पर। तरखीम उल मुनादा भाई, मुनादा के आखिर से, मुनादा के आखिर से हजफ कर लेना, तखफीफन, किस लिए, तखफीफ के तौर पर, उस यानी ताकि उसकी अदायगी जुबान पर हल्की हो जाए भाई। देखो याद रखो, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक है निदा और एक है जवाब निदा। मैं जैद को आवाज देता हूं, ए जैद मेरे लिए पानी ले आओ। अब मुझे बताइए मेरा मकसद क्या था, ए जैद ये कहना मेरा मकसद था या पानी ले आओ ये मेरा मकसद था, पानी ले आओ। ए जैद ये तो निदा है, ये तो मैंने सिर्फ उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कहा है। आगे जो जवाब निदा होता है, आगे जो बात की जाती है वो है मकसूद भाई। तो मालूम हुआ निदा है गैर मकसूद, लिहाजा इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द यह गैर मकसूद गुजरे और मैं आगे अपना मकसद बयान करूं, लिहाजा इसलिए मुनादा में तरखीम की जाती है। कभी उसे एक हर्फ को खत्म कर देते हैं आखिर से, कभी दो हरूफ खत्म कर देते हैं, कभी अगर वह मुरक्कब हो तो पूरा कलीमा उसके आखिर से उड़ा देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी मुनादा गुजर जाए और हम फिर अपना मकसद आगे बयान करें। और यह किस लिए किया जाता है, तखफीफ के लिए, ताकि मुनादा क्या हो जाए, खफीफ हो जाए, जल्दी से गुजरे, जल्दी से आसानी से अदा हो और हम फौरन अपना मकसद बयान करें। तो कहते हैं वह हुआ हज़्फ़ुन फी आखिरी ही, तरखीम में मुनादा जो है वह मुनादा के आखिर से हजफ करना है, तखफीफन, किस लिए, तखफीफ के लिए भाई, तखफीफ के लिए। आगे देखिए कहते हैं वह शर्त हूं जी, अब शर्तें जिक्र करने लगे हैं कि तरखीम की शराइत क्या है, कहां आप तरखीम कर सकते हैं और कहां तरखीम नहीं कर सकते। आपको बतलाएंगे तरखीम मुनादा की चार शर्तें हैं, तरखीम मुनादा की चार शर्तें हैं। तीन शर्तें आदमी हैं, यानी तीन चीजों का न होना जरूरी और एक चीज वजूदी है, यानी उसका होना जरूरी। तो चार शर्तों में से तीन आदमी है और एक वजूदी है। आदमी शर्तें तीन, कि तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज कि वो मुनादा मुजाफ ना हो, या अब्दल्लाह, अब आप इसमें तरखीम करना चाहते हैं, नहीं भाई ये मुनादा तो मुजाफ है, आप इसमें तरखीम नहीं कर सकते। दूसरा, मुनादा मुस्तगास नहीं होना चाहिए, या लज़ैदिन, या लज़ैदिन, इसमें आप तरखीम नहीं कर सकते भाई। या मुस्तगास के आखिर में कभी अलिफ बढ़ाते हैं, या जैदा, अब आप इसमें तरखीम करना चाहते हैं, नहीं भाई मुस्तगास के अंदर आप तरखीम नहीं कर सकते। तीसरी शर्त आदमी जो है वो ये कि वो जुमला नहीं होना चाहिए, वो जुमला नहीं होना चाहिए। मसलन किसी आदमी का नाम पड़ गया था तअब्बता शर्रन, ये बात पहले भी गुजर चुकी है, तअब्बता शर्रन इबित से है, हमजा बा और त्वा भाई त्वाजवा, तो तअब्बता शर्रन। कोई आदमी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी उठाकर बगल में जमा करके ले आया, घर पहुंचाई, बीवी ने लकड़ियों का गट्ठा खोला तो उसके अंदर से सांप निकल आया, तो बीवी ने कहा तअब्बता शर्रन। तअब्बता का माना है बगल में कोई चीज उठाना, हाथ के नीचे कोई चीज उठाकर पहलू पर लेकर आना, इसको तअब्बत। तो तअब्बता शर्रन कि इसने तो बगल में शर उठाया था भाई, बात समझ में आई। तो उससे उस आदमी का नाम ही क्या पड़ गया तअब्बता शर्रन। अब देखो ये पूरा जुमला है तअब्बता फेल, इसके अंदर हुआ जमीर उस आदमी को राजे फाइल है और शर्रन मफूल भी ही है कि उस आदमी ने शर को उठाया। तो अब यहां अब इसके अंदर तरखीम नहीं करेंगे भाई, इसलिए क्योंकि जो जब जुमला किसी का नाम पड़ जाए तो फिर उसमें तब्दीली नहीं की जाती, क्योंकि वह जुमला उस पूरे वाकये पर दलालत कर रहा है। अगर आप इसमें से कुछ लफ्जों को उड़ा देंगे तो फिर उस वाकये पर इसकी दलालत बाकी नहीं रहेगी। या जैसे एक औरत थी भाई, उसके बाल जो हैं सफेद हो गए भाई, तो बाज औरतों की नजर पड़ी होगी, उसने चोटियां दो चोटियां बनाई हुई थी, दो मेंढियां बनाई हुई थी और दोनों सफेद हो चुकी थी। तो किसी औरत ने कह दिया शाबा करनाहा, कर्न मेंढी को कहते हैं, मेंढी जो बालों की बनाई जाती है, रस्सी की तरह बाल बनाती है औरतें, तो दो चोटियां बनाई थी। तो औरत ने किसी ने क्या कहा शाबा करनाहा, शाबा अशीबू का माने सफेद होना बालों का, और करनाहा करना देखो तस्निया है करनानी, और शाबा करनाहा उसकी दोनों चोटियां सफेद हो गई हैं, अब ये उसका नाम ही पड़ गया भाई शाबा करनाहा। अब देखो शाबा फेल है, करनाहा उसका फाइल है, और ये पूरा जुमला है ये नाम है। अब अगर इस जुमले में से कुछ लफ्ज हम उड़ाएंगे तो इसकी उस वाके पर दलालत खत्म हो जाएगी कि इसका ये नाम कैसे पड़ा भाई, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा मुनादा जो है उसके अंदर तरखीम की जाती है, उसमें चार शर्तें हैं, तीन शर्तें आदमी हैं, एक वजूदी है। आदमी शर्तें कौन कौन सी हैं कि वो मुजाफ नहीं होना चाहिए और नीज मुस्तगास नहीं होना चाहिए और नीज वो जुमला नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं व शर्तुहु, और तरखीम मुनादा की शर्त ये है अल्लाह यकूना मुजाफन के वो मुनादा जो है मुजाफ न हो, वला मुस्तगासन और मुस्तगास न हो, वला जुमलतन और वो जुमला न हो। ये तीन आदमी शर्तें थीं। अब वजूदी शर्त आ गई भाई, वजूदी शर्त भाई, वजूदी शर्त याद रखो दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए, दो चीजों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए, या तो वो मुनादा आलम हो और आलम भी ऐसा हो जो तीन हरूफ से जायद हो, आलम हो और तीन हरूफ से जायद हो, यानी कम अज कम चार हरूफ हो, ताकि आखिर से हम एक हर्फ उड़ा भी दें तो बाद में भी कम अज कम तीन हरूफ रह जाएं। क्योंकि मुअरब के अंदर कियासन यह है कि कम से कम उसमें तीन हरूफ होने चाहिए भाई, मुअरब के अंदर कियासन कम अज कम कितने हरूफ होने चाहिए, तीन। तो आलम भी हो और तीन हरूफ से जायद हो, ताकि आखिर से हम जब हरूफ उड़ा दें, चाहे एक उड़ाएं या एक से ज्यादा, तो बाकी कितने बच जाएं, तीन हरूफ कम अज कम बाकी बच जाएं भाई। तो वजूदी शर्त क्या कि वो आलम हो और आलम भी ऐसा हो जो तीन हरूफ से जायद हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कम अज कम उसके आखिर में ताए तानीस जुड़ी होनी चाहिए, ताए तानीस जुड़ी होनी चाहिए। तो तरखीम की कितनी शराइत हैं, चार, चार शराइत हैं, तीन शर्तें आदमी और एक वजूदी है भाई। पहली आदमी शर्त क्या कि वो मुनादा मुजाफ ना हो, दूसरी शर्त कि वो मुस्तगास ना हो, तीसरी शर्त कि वो जुमला ना हो, और वजूदी शर्त दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए, यानी अहदुल अमरैन होना चाहिए, या तो वो मुनादा ऐसा आलम हो जो तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल हो, और अगर ऐसा ना हो तो कम अज कम उसके आखिर में ताए तानीस जुड़ी हुई हो। तो कहते हैं वह हुआ इम्मा अलमन जाइदन अला सलासति अहरुफिन, और वो मुनादा जो है या तो वो ऐसा आलम होना चाहिए जो जायद हो तीन हरूफ पर, व इम्मा बिताइद तानीसी, या उसको ताए तानीस के साथ होना चाहिए, उसको ताए तानीस के साथ होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब आइए भाई शरा के साथ ही सारे को देखें भाई। देखिए भाई शुरू से कहते हैं वलम्मा काना मिन खसाइसिन निदा इतरखीम, और जब निदा की खसूसियात में से तरखीम है, निदा की खसूसियात में से तरखीम है। मैंने बताया तरखीम और असमा में भी होती है लेकिन आम कलाम में नहीं, बल्कि सिर्फ जरूरत शेरी की बिना पर, जबकि आम कलाम में सिर्फ मुनादा के अंदर तरखीम होती है। इसीलिए कहा वलम्मा कान अमीन खसा इसिन निदा इतरखीम, और जब निदा की खसूसियात में से तरखीम है शराफी बयानी ही, तो साहिब काफिया उस तरखीम के बयान में शुरू हुए, फकाल पस फरमाया व तरखीम उल मुनादा जायजुन, और मुनादा की तरखीम जायज है। जायज है क्या माना, अई वाकिउन फी साअतिल कलामी, यानी ये वाक़े है आम कलाम के अंदर, मिन गैरी जरूरतिन शेरियतिन दाअत इलैही, बगैर किसी ऐसी जरूरत शेरिया के जो इसकी तरफ दावत दे, बगैर किसी जरूरत शेरिया के भी आम कलाम में यह जायज है। फइन दअत इलैही जरूरतुन, अगर कोई जरूरत शेरिया इसकी तरफ दावत दे, फबितरीकिल औला, तो फिर यह बतरीके औला जायज है। भाई मुनादा के अंदर आम कलाम के अंदर बगैर किसी जरूरत के जब तरखीम जायज है तो जरूरत शेरी की वजह से बतरीके औला जायज होगी। तर्जमा समझ में आ गया, फिर तर्जमा देख लें। वह तरखीम उल मुनादा जायजुन, और मुनादा की तरखीम जायज है। अय वाकिउन फी साअतिल कलामी, यानी आम कलाम के अंदर वाक है, मिन गैरी जरूरतिन शेरियतिन दाअत इलैही, बगैर किसी ऐसी जरूरत शेरिया के जो इसकी तरफ दावत दे, आम कलाम में भी जायज है बगैर किसी ऐसी जरूरत शेरिया के जो इसकी तरफ दावत दे। फइन दअत इलैही जरूरतुन, अगर जरूरत इसकी तरफ दावत दे यानी तरखीम की तरफ दावत दे, फबितरीकिल औला, तो फिर तो मुनादा के अंदर बतरीके औला जायज है। वह हुआ फी गैरिही अय गैरिल मुनादा वाकिउन जरूरतन, और ये तरखीम जो है फी गैरिही अय गैरिल मुनादा, गैर मुनादा के अंदर भी वाके होती है, जरूरतन अय लि जरूरतिन शेरियतिन दाइयतिन इलैही, यानी ऐसी जरूरत शेरिया की वजह से जो इसकी तरफ दावत देने वाली है, यानी बाकी जगह बगैर जरूरत के जायज नहीं, तो ऐसी जरूरत शेरिया की वजह से जो उसकी तरफ दावत देने वाली हो, लाफी सातिल कलामी, यानी और बाकियों में आम कलाम के अंदर जायज नहीं भाई। वह हुआ अय तरखीम उल मुनादा हसफुन फी आखिरी ही अय आखिरिल मुनादा तखफीफन, भाई आपको साहिबे जामी बतलाएंगे ये जो तारीफ कर रहे हैं, तवज्जो से सुनो, सिर्फ मतन मतन को देखो। वह हुआ हसफुन फी आखिरी ही तखफीफन, यह तारीफ है तरखीम की, यह तारीफ तरखीम मुनादा की भी हो सकती है और यह तारीफ मुतलक तरखीम की भी हो सकती है। एक वो तरखीम है जो खास तौर पर किस में की जाए, मुनादा में, और एक जो मुतलक तरखीम है चाहे मुनादा में हो चाहे गैर मुनादा में हो, दोनों की तारीफ ये बन सकती है। ये तरखीम मुनादा की भी तारीफ बन सकती है और मुतलक तरह, जुबान से दोहराएं भाई, ये किसकी तारीफ बन सकती है, तरखीम मुनादा की भी तारीफ बन सकती है और मुतलक तरखीम की भी यह तारीफ बन सकती है। तो सबसे पहले इसको तरखीम मुनादा की तारीफ बनाएंगे साहिब जामी, इसलिए क्योंकि कलाम मुनादा के बारे में चल रहा है तो ज्यादा मुनासिब यही है कि यह तारीफ मुतलक तरखीम की नहीं होगी बल्कि किसकी होगी, तरखीम मुनादा की होगी, लेकिन मुतलक तरखीम की भी तारीफ बन सकती है, यह एहतमाल भी इसके अंदर है, वो फिर आखिर में यह जिक्र करेंगे। अगर आप इसको तरखीम मुनादा की तारीफ बनाना चाहते हैं तो देखो इसके अंदर दो जमीरें आ रही हैं, जरा इबारत पर नजर रखो। वह हुआ, एक तो यह जमीर मरफू है, जमीर मरफू है, मुब्तदा है, और एक है हज़फ़ुन फी आखिरी ही, ये आखिरी ही के आखिर में हा जमीर है, मुज़ाफ़ुन इलैह है, मजरूर, तो एक जमीर मरफू है यहां पर, एक जमीर मजरूर है, तो इन जमीरों का मर्जा बदलेंगे तो तारीफ बदल जाएगी। पहली सूरत क्या हुआ, जमीर को लौटाएं तरखीमुल मुनादा की तरफ, किसकी तरफ, मुतलक तरखीम को ना लौटाएं बल्कि तरखीमुल मुनादा, और आखिरी ही की हा जमीर मुनादा को लौटा दें। अब इबारत सुनो, तर्जमा सुनो, वह हुआ आई तरखीम उल मुनादा, देखो तरखीम उल मुनादा को जमीर राजे की, यानी तरखीम मुनादा जो है हज़्फ़ुन फी आखिर ही, वह हजफ करना है उसके आखिर में, भाई किसके आखिर में, आई आखिर इल मुनादा, यानी मुनादा, मुनादा के आखिर से हजफ करना यह है तरखीम उल मुनादा तख़फ़ीफ़न, और यह किस लिए किया जाता है, तख़फ़ीफ़ के लिए, यह मफ़ऊल लहू है जो माकबल की इल्लत बयान करता है। तो तरखीमुल मुनादा किस चीज का नाम, मुनादा के आखिर से हजफ करना किस लिए, तख़फ़ीफ के लिए। तो देखो हुआ जमीर लौटाई तरखीमुल मुनादा को, और जमीर मजरूर लौटाई किसको, मुनादा को। हुआ जमीर किसको लौटाई, तरखीमुल मुनादा को, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, और आखिरी ही की हा जमीर किसको लौटाई, मुनादा को लौटाई, कि मुनादा के आखिर से हजफ करना। दूसरी सूरत यह है कि हुआ जमीर मुतलक तरखीम को लौटाएं, तरखीमुल मुनादा को ना लौटाएं बल्कि मुतलक तरखीम को लौटाएं, कि तरखीम किसे कहते हैं, और हज़्फ़ुन फी आखिरही, आखिरही की हा जमीर मुनादा को ना लौटाएं बल्कि मुतलक इसम को लौटाएं, किसको, यानी इसम को लौटाएं, इसम को। अब सुनो, वह हुआ और वो जो तरखीम है हज़्फ़ुन फी आखिरही, वो इसम के आखिर से हजफ करना है तख़फ़ीफ़न, किस लिए, तख़फ़ीफ के लिए, किसी भी इसम के आखिर से हजफ करना, ये क्या है, ये क्या है, तरखीम है, और ये किस लिए किया जाता है, तख़फ़ीफ के लिए, किसी और इल्लत की वजह से नहीं किया जाता। भाई फर्क समझ में आया, देखिए भाई कहते हैं वह हुआ ऐ तरखीम उल मुनादा हज़्फ़ुन फी आखिरी ही, और तरखीम मुनादा जो है वह हजफ करना है फी आखिरी ही, ऐ आखिरिल मुनादा, मुनादा के आखिर से तख़फ़ीफ़न, किस लिए, यह हजफ किस लिए होता है, तख़फ़ीफ़ के लिए होता है, ऐली मुजर्रदी तख़फ़ीफ़ी, यानी सिर्फ तख़फ़ीफ़ के लिए यह हजफ किया जाता है, लाले इल्लतिन उख़रा, न किसी और दूसरी ऐसी इल्लत की वजह से, मुफ़ज़ियतिन इलल हज़्फ़ी, कि वो इल्लत पहुंचाने वाली हो उस हजफ तक, अल मुस्तलज़िम लि तख़फ़ीफ़, कि जो मुस्तलज़िम है तख़फ़ीफ़ को। भाई याद रखो, जहां भी हजफ होगा वहां तख़फ़ीफ़ जरूर आएगी, जहां भी हजफ होगा जाहिर सी बात है वहां तख़फ़ीफ़ आएगी, क्योंकि लफ्ज़ या हुरूफ कम हो जाएंगे, जब हुरूफ कम होंगे तो जुबान पर अदायगी आसान होगी, तो जहां भी हजफ होगा वहां तख़फ़ीफ़ जरूर होगी। लेकिन यह हजफ क्यों किया गया, कभी कभार यह हजफ सिर्फ तख़फ़ीफ़ के लिए होगा और कोई मकसद नहीं होगा, और कभी कभार यह जो हजफ होगा यह किसी इल्लत की वजह से होगा, और किसकी वजह से होगा, किसी और इल्लत की वजह से हजफ हुआ, तो चाहे जिस इल्लत की वजह से भी हजफ हुआ हो तख़फ़ीफ़ आएगी या नहीं, तख़फ़ीफ़ तो दोनों जगह आएगी, लेकिन फर्क समझ में आ रहा है, बाद औकात हजफ होगा ही सिर्फ तख़फ़ीफ़ के लिए, और बाद औकात हजफ होगा तो किसी और इल्लत की वजह से, लेकिन उस हजफ की वजह से क्या आ जाएगी, तख़फ़ीफ़ आ जाएगी। जैसे काजिन, काजिन असल में क्या था, काजियुन, फिर या पर जम्मा सकील था, गिरा दिया तो या साकिन हुई, आगे नूने तनवीन भी साकिन, क्या बन गया, काजीन। अब यहां या को गिरा दिया, क्यों गिराया, इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिराया, तख़फ़ीफ के लिए नहीं गिराया, किसकी वजह से गिराया, तो इस इल्लत की वजह से या गिरी, तो क्या बन गया, काजीन। तो इस इल्लत की वजह से या गिरी और तख़फ़ीफ आई या नहीं आई, तख़फ़ीफ तो फिर भी आ गई। या जैसे आसान, भाई आसा लाठी को कहते हैं, यह असल में था आसावन, आसावन वह मुतहर्रिक माकबल फतहा, उसको किससे बदला, अलिफ से, तो अलिफ भी साकिन, आगे नूने तनवीन भी है वो भी साकिन, तो आसान हो गया, फिर अलिफ भी साकिन नून भी साकिन, इज्तिमाई साकिन ऐन आया, अव्वल मद्दा हो तो उसको गिराते हैं, तो अलिफ गिर गया, क्या बन गया, आसान। तो यहां जो अलिफ को गिराया, तख़फ़ीफ़ के लिए गिराया या किसी और इल्लत की वजह से, किसी और इल्लत की वजह से, और तख़फ़ीफ़ फिर भी आ गई, तो जहां भी हजफ होगा तख़फ़ीफ़ तो जरूर आएगी, लेकिन यहां जो हजफ किया जा रहा है वहां कोई और इल्लत नहीं बल्कि सिर्फ तख़फ़ीफ ही मकसूद है। फर्क समझ में आ गया। और याद रखो कभी कभार हज़फ वैसे भी किया जाता है, जैसे यदुन और दमुन। यदुन असल में क्या था? यदवुन। दमुन असल में क्या था? दमवुन। तो इनके आखिर से वाव को हज़फ किया गया और खिलाफुल कियास हज़फ किया गया। तो बाद औकात खिलाफुल कियास भी किसी लफ्ज के आखिर से किसी हर्फ को हज़फ कर लिया जाता है। तो वहां कोई इल्लत भी नहीं है, वहां भी कोई, और उसकी वजह से भी तख़फ़ीफ़ आई, लेकिन उनका एतबार नहीं क्योंकि वो निहायत कलील हैं, वो शाज हैं भाई, और शाज का कोई एतबार नहीं। कवानीन जो हैं वो शाज चीजों पर मुरतब नहीं होते, बल्कि कसीर उल इस्तेमाल चीजों पर कवानीन मुरतब होते हैं। तो कहते हैं तख़फ़ीफ़न दी, आगे साहिब जामी फरमा रहे हैं अली मुजर्रदी तख़फ़ीफ़ी, ये जो हज़फ किया जाता है मुनादा में ये सिर्फ किस लिए होता है? सिर्फ तख़फ़ीफ़ के लिए होता है, लाल इल्लतिन उखरा, किसी दूसरी इल्लत की वजह से नहीं होता। आगे मुफ़ज़ियतिन, ये सिफत है इल्लत की, कोई दूसरी ऐसी इल्लत मुफ़ज़ियतिन इलल हज़्फ़ी, जो पहुंचाने वाली है हज़फ़ तक, जैसे आसान में एक इल्लत पहुंचाने वाली थी हज़फ़ तक, जैसे काज़िन के अंदर एक इल्लत पहुंचाने वाली थी हज़फ़ तक। कौन सा हज़फ़? इलल हज़्फिल मुस्तलज़िम लितख़फ़ीफ़, वो हज़फ़ जो मुस्तलज़िम है तख़फ़ीफ़ को, यानी जिसके साथ तख़फ़ीफ़ लाज़िम है। तो हज़फ़ के साथ तो तख़फ़ीफ़ यहां भी लाज़िम है, लेकिन यहां हज़फ़ तख़फ़ीफ़ के लिए नहीं किया गया बल्कि किसी इल्लत की वजह से किया गया। अब तर्जमा जरा दोबारा देख लो। कहते हैं तख़फ़ीफ़न अयली मुजर्रद तख़फ़ीफ़ी, यानी सिर्फ तख़फ़ीफ़ के लिए हज़फ़ किया जाता है, लाल इल्लतिन उख़रा, ना कि किसी दूसरी ऐसी इल्लत की वजह से, मुफ़ज़ियतिन इलल हज़्फ़ी, जो पहुंचाने वाली हो उस हज़फ़ तक, अल मुस्तलज़िम लितख़फ़ीफ़, वो हज़फ़ जो मुस्तलज़िम है तख़फ़ीफ़ को, यानी जिसके साथ तख़फ़ीफ़ लाज़िम है भाई। फ़ाला हादा यकूनु दालिका तारीफ मखसूसन भी तरखीम मुनादा, मैंने आपको बताया भाई ये तारीफ तरखीम मुनादा की भी हो सकती है और मुतलक तरखीम की भी हो सकती है। तो अब बयान कर रहे हैं, कहते हैं फ़ाला हादा, तो बिना बर इसके, यानी बिना बर इसके कि हुआ जमीर किसको लौटाएं? तरखीम मुनादा को लौटाएं, तवज्जो है, और आखिरी ही की हा जमीर किसको लौटाएं? मुनादा को लौटाएं। फ़अला हाज़ा, इस बिना पर, इस तकदीर पर, यकून ज़ालिका तारीफ मखसूसन बितरखीमिल मुनादा, तो ये जो तारीफ जिक्र की ऊपर, ये खास है किसके साथ? तरखीमुल मुनादा के साथ, यानी ये उसकी तारीफ है। व युअलमु मिन्हु तरखीमु गैरिल मुनादा बिल मुकायसती, और इससे मालूम हो जाती है गैर मुनादा की तरखीम भी बिल मुकायसती, कियास करते हुए। गैर मुनादा में भी तरखीम की जाती है, तो इसी पर कियास करके गैर मुनादा की तरखीम को भी जाना जा सकता है कि गैर मुनादा में भी क्या किया जाता है? तख़फ़ीफ़ के लिए जरूरत की वजह से क्या कर लिया जाता है? हज़फ़ कर लिया जाता है। व युमकिनु हमलुहु अला तारीफ़ी तरखीम मुतलकन, और ये जो तारीफ की, इसको महमूल किया जा सकता है अला तारीफ़ी तरखीम मुतलकन, मुतलकन तरखीम की तारीफ पर भी इस इबारत को महमूल किया जा सकता है मुतलक तरखीम की तारीफ पर भी, बी इर्जा ज़मीर मरफू इल तरखीम मुतलकन, बई सूरत के लौटाया जाए वो जो जमीर मरफू है, यानी वो जो हुआ जमीर थी, वो जो जमीर मरफू है उसको लौटाया जाए, इल तरखीम मुतलकन, किसकी तरफ? मुतलक तरखीम, तरखीम की तरफ, मुतलकन, इस हाल में कि वह तरखीम क्या हो? मुतलक हो, यानी मुनादा की कैद उसमें ना हो। والضمير المجرور الى الاسم, और जमीर मजरूर को लौटाया जाए, इल इस्म, किसकी तरफ? इसम की तरफ। तवज्जो है, पहले साहिब जामी ने हुआ जमीर किसको लौटाई? तरखीमुल मुनादा को, और आखिरी ही की हा जमीर किसको लौटाई? मुनादा को। दूसरी सूरत यह है कि यह तारीफ किसकी बना लें? मुतलक तरखीम की, हुआ जमीर किसको लौटाएं? मुतलक तरखीम को, और आखिरी ही की हा जमीर किसको लौटाएं? इसम को लौटाएं। बात समझ में आ गई, यही दोबारा देखें। कहते हैं भी इर्जा जमीर मरफू इल तरखीम मुतलकन, बाई सूरत के लौटाया जाए जमीर मरफू को तरखीम की तरफ, वो तरखीम जो मुतलक हो। वह जमीर मजरूर इल इस्मी, और जमीर मजरूर को लौटाया जाए इसम की तरफ। व शर्त हो, और इसकी शर्त यह है, अब तरखीम की शर्तें बयान होने लगी हैं। मालूम हुआ यह शर्त हो कि हा जमीर, इसमें भी दो एहतमाल आ गए। अगर पीछे तरखी में मुनादा की तारीफ की थी किसकी, तो इस तरखी में मुनादा की शर्त ये आगे उसकी शर्तें हैं, तो फिर तो कोई तकदीर इबारत निकालने की जरूरत, तारीफ भी किसकी की, तरखी में मुनादा की, और शर्तें भी किसकी हैं, तरखी में मुनादा की। लेकिन अगर पीछे तारीफ को मुतलक तरखीम की तारीफ करार दिया जाए, तारीफ किसकी की मसलन मुतलक तरखीम की, और आगे शर्तें किसकी हैं, तरखीम में मुनादा की, तो फिर तो मुनासिबत नहीं बन रही। तो फिर दरमियान में एक और कैद बढ़ा देना, क्या वह शर्त हो, और तरखीम की शर्त यह है जब यह मुनादा के अंदर वाके हो। तरखीम की शर्त यह है कब, जब मुनादा के अंदर तरखीम हो तो फिर उसकी ये शर्तें हैं। देखा, मुनादा के अंदर जब तरखीम हो, ये लफ्ज ये कैद उसमें बढ़ा देना। इबारत समझ में आ गई। तो कहते हैं वशर्त हु ऐशर्तु तरखीम इल मुनादा, यानी तरखीम मुनादा की शर्त अला तकदीर इल अव्वली, पहली तकदीर पर। पहली तकदीर कौन सी थी कि यह तारीफ किसकी बनाओ, तरखीम मुनादा की तारीफ बनाओ, तो फिर शर्त हु कि हा जमीर किसको राजे करो, तरखीम उल मुनादा को। और शर्त तरखीमी, और अगर यह तारीफ किसकी थी, मुतलक तरखीम की, तो शर्त हु कि हा जमीर भी किसको लौटानी पड़ेगी, मुतलक तरखीम को। और शर्तें तो किसकी हैं, तरखीम मुनादा की, तो फिर क्या कहेंगे, मुतलक तरखीम की शर्त यह है जब यह किसमें वाके हो, मुनादा में हो, तो फिर उसकी ये शर्तें हैं। शर्त हु मुतलक तरखीम की शर्त, और आगे तो शर्तें किसकी हैं, तरखीम मुनादा की। तो मुतलक तरखीम की शर्त जब ये कहां पर, ये मुतलक तरखीम हो, मुनादा के अंदर हो, तो फिर उसकी ये शर्तें हैं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं औ शर्त तरखीमी, और या तरखीम की शर्त, देखो अब जमीर सिर्फ तरखीम को लौटाई, औ शर्त तरखीमी या तरखीम की शर्त, देखो ये कैद बढ़ाने लगे हैं, इजा काना वाकअन फिल मुनादा, जब ये तरखीम किसमें वाके हो, मुनादा में हो, तो उस वक्त उसकी ये शर्तें हैं। भाई इबारत भी समझ में आई या नहीं, फिर देखो वह शर्त हु ऐशर्त तरखीम इल मुनादा अलत तकदीर इल अव्वली, तरखीम मुनादा की शर्त पहली तकदीर पर, जब यह तारीफ किसकी बनाए, तकदीर अव्वल से क्या मुराद है, जब यह तारीफ किसकी बनाए, तरखीम मुनादा की, तो हाज अमीर भी किसको राजे, तरखीम उल मुनादा को। और शर्त तरखीमी, अब देखो जमीर किसको लौटाई, सिर्फ तरखीम को लौटाई, और ये किस तकदीर पर है, जब ये सिर्फ तरखीम की तारीफ आप इसको बनाएं ऊपर। तो कहते हैं वह शर्त तरखीमी, तरखीम की शर्त, इजा का न वाकअन फिल मुनादा, जब ये तरखीम कहां पर वाके हो, मुनादा के अंदर, ये कैद बीच में बढ़ा दो, अलत तकदीर सानी, दूसरी तकदीर पर, यानी जब इसको किसकी तारीफ बनाया था, मुतलक तरखीम की। तो उमूर उन अरबातुन, वो शर्त क्या है, उमूर उन अरबातुन, चार चीजें हैं भाई, सलासतुम मिनहा आदमीयतुन, तीन चीजें उनमें से आदमी हैं, वहिया, और वो ये, वो आदमी चीजें अब बयान करने लगे हैं, वहिया और वो ये, अल्लाह यकूना मुजाफन, कि वो जो मुनादा है वो मुजाफ न हो, मुनादा मुजाफ न हो, हकीकतन और हुक्मन, यानी हकीकतन भी मुजाफ न हो और हुक्मन भी मुजाफ न हो। आपको मैंने बतलाया था कि इजाफत दो किस्म पर है, एक इजाफत मानवी और एक इजाफत लफ्जी। इजाफत लफ्जी किसे कहते हैं, कि सीगा सिफत का हो और मुजाफ हो अपने मामूल की तरफ, और सिफत के सीगे से हर सिफत का सीगा नहीं मुराद, इसमें फाइल, इसमें मफूल और सिफत मुशब्बा, ये तीन सीगे, इनमें से कोई सीगा हो और फिर अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो जाए, तो इसको इजाफत लफ्जी कहते हैं। और मैंने मिसाल जिक्र की थी, जैसे जैदुन जारिबुन आमरन, जैदुन जारिबुन आमरन, जैदुन मरफू लफ्जन मुब्तदा, जारिबुन मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन, इसका फाइल जो किसको राजे, जैद को, क्योंकि खबर को किससे जोड़ते हैं, मुब्तदा से। और आमरन क्यों मंसूब है, ये मफूल भी ही है, किसके लिए, जारिबुन के लिए, तो मालूम हुआ ये आमरन मामूल है जारिबुन इसमें फाइल का। अब इस जारिब की इजाफत कर दो आमर की तरफ, जैदुन जारिबु आमरिन, तो ये जो सिफत का सीगा है यह मुजाफ हो गया अपने मामूल की तरफ, इसको कहते हैं इजाफत लफ्जी। और याद रखो इजाफत लफ्जी सिर्फ लफ्जों में तखफीफ का फायदा देती है और इसका कोई फायदा नहीं। इस इजाफत की वजह से जारिबुन से तनवीन गिर गई, बस जारिबु आमरीन हो गया, तनवीन गिर गई, बाकी लफ्जों में कोई फायदा नहीं दिया। आपने पढ़ा है कि कोई लफ्ज जब मारिफा की तरफ मुजाफ हो तो वो क्या बन जाता है, मारिफा। लेकिन जारिबु आमरीन, तो जारिब मुजाफ है आमरीन आगे आलम की तरफ, लेकिन फिर भी ये उसी तरह नकेरा का नकेरा है। तो ये जो इजाफत लफ्जी होती है ये तकदीर इन्फिसाल में होती है, यानी ये उसी तरह है जैसे अलग थी, जैसे जारिबुन आमरान था, जारिबुन अलग था, अभी भी ये उसी तरह नकेरा का नकेरा है। जबकि इसके अलावा बाकी जितनी इजाफतें हैं वो इजाफतें मानवी कहलाती हैं, और उसमें अगर लफ्ज मारिफा की तरफ मुजाफ हो तो वो भी मारिफा बन जाता है। गुलाम उजैदीन, गुलाम देखो मुजाफ है किसकी तरफ, जैद की तरफ, तो गुलाम का लफ्ज भी मारिफा बन गया। तो नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ हो तो वह मारिफा बनता है, और नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ हो तो भी वह नकेरा रहता है लेकिन उसमें तख्सीस आ जाती है। गुलाम रजुलिन, किसी आदमी का कोई गुलाम, किसी आदमी का, देखो गुलाम मुजाफ है नकेरा है और रजुलिन मुजाफिल है वो भी नकेरा है। हां इसमें तख्सीस आ गई, इससे औरतों के गुलाम निकल गए। तो सीगा सिफत का हो मुजाफ हो अपने मामूल की तरफ, यह है इजाफत लफ्जी। और इसके अलावा जितनी इजाफतें हैं वो इजाफत मानवी हैं, इजाफत मानवी हैं, चाहे सीगा सिफत का ही ना हो सिरे से, जैसे गुलाम उजैदीन, ये गुलाम सिफत का सीगा ही नहीं है, ना ही इसमें फाइल है, ना ही इसमें मफूल है, और ना ये सिफत मुशब्बा है। या सीगा सिफत का हो लेकिन अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो, वो भी इजाफत मानवी ही है, जैसे करीमुल बलद, करीम सिफत मुशब्बा है, सिफत का सीगा है, लेकिन अल बलद की तरफ ये मुजाफ हो रहा है जो ना इसका फाइल है और ना मफूल है। तो सिफत का सीगा अपने मामूल की तरह मुजाफ होगा तो इजाफत लफ्जी है। अगर इसके अलावा जितनी भी सूरतें हैं वो सब क्या हैं, इजाफत मानवी हैं, और इजाफत मानवी या तारीफ का फायदा देती है या तख्सीस का फायदा देती है, यानी माना के अंदर फायदा दे रही है बाकायदा, जबकि इजाफत लफ्जी सिर्फ लफ्जों में तख्फीफ का फायदा देती है कि आखिर से तनवीन गिर जाती है या कायम मकाम तनवीन यानी नून तस्निया या नून जमा गिर जाते हैं, और कोई फायदा इसका नहीं। लफ्ज जैसे पहले नकेरा था अभी भी नकेरा है, जैसे कुरान में है हाजा आरिजुन मुमतेरोना, आरिज बादल को कहते हैं, मुमतेरोना मुमतेर इसमें फाइल है और ना जमीर मफूल है, और आरिज देखो मौसूफ है और मुमतेरोना उसकी सिफत है। तो तालिबे इल्म के जहन में इश्काल आता है, आरिजुन तो नकेरा है और मुमतेरोना मुजा मुजाफिले मिलकर यह तो मारिफा है, तो फिर ये आपस में मौसूफ सिफत कैसे हो सकते हैं, हालांकि मौसूफ सिफत में तो मुताबकत जरूरी है, मौसूफ नकेरा हो तो सिफत भी नकेरा, मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा। तो जवाब याद रखना कि ये मुमतिरुना की जो इजाफत हो रही है ना जमीर की तरफ, ये इजाफत लफ्जी है, सिगा सिफत का है और मुजाफ है अपने मामूल की तरफ, और ये अभी भी नकेरा का नकेरा ही है। जैसे आरिजुन नकेरा, मुमतिरोना भी नकेरा है, इसने सिर्फ तनवीन गिराई है और इसमें ना तारीफ आई ना तख्सीस आई। तो बहरहाल चाहे इजाफत लफ्जी हो चाहे इजाफत मानवी हो, दोनों में इजाफत तो है, दोनों में इजाफत तो है, तो इनमें हकीकतन इजाफत है। इन्होंने क्या कहा, किताब पर देखें, अल्ला यकूना मुजाफन, कि वो मुनादा मुजाफ ना हो, हकीकतन और हुक्मन, साहिब जामी उसके अंदर तामीम कर रहे हैं कि ना हकीकतन मुजाफ हो ना हुक्मन। हकीकतन मुजाफ में कौन कौन आ गए, मुजाफे मानवी भी आ गया और मुजाफे लफ्जी भी आ गया, इजाफत तो है दोनों के अंदर भाई, और हुक्मन मुजाफ के अंदर मुशाबह मुजाफ दाखिल हो गया, या तालियान जबलन, यह तालियान क्या है, मुशाबह मुजाफ है, यह मुजाफ तो नहीं लेकिन मुशाब। तो जब कहा अल्ला यकूना मुजाफन, वो मुनादा मुजाफ ना हो, चाहे मुजाफ हकीकतन हो चाहे हुक्मन, तो मुजाफे मानवी भी निकल गया वो भी नहीं होना चाहिए, मुजाफे लफ्जी भी निकल गया वो भी नहीं होना चाहिए, और चाहे हुक्मन मुजाफ हो यानी मुशाबह मुजाफ हो वो भी नहीं होना चाहिए, सब निकल गए, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अल्ला यकूना मुजाफन, के वो मुनादा मुजाफ ना हो हकीकतन और हुक्मन, चाहे हकीकतन हो चाहे हुक्मन, दोनों में नहीं होना चाहिए, فدخل فيه المشبه بالمضاف ايضا, تو اس کے اندر مشبہ بالمضاف بھی داخل ہو گیا, یعنی مشابہ مضاف بھی داخل ہو گیا, یعنی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی منادا. اذ لا يمكن الحذف من الاول. اچھا بھائی یہ شرط کیوں لگائی کہ منادا میں جب آپ ترخیم کرنے لگے ہیں تو اس کو مضاف نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ مثلا یا عبد اللہ, اب ترخیم کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو ترخیم کریں گے آپ عبد کے آخر سے یا لفظ اللہ کے آخر سے. یہ انہوں نے کیا کہا, آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو منادا کو مضاف نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے, وجہ میں بیان کر رہا ہوں, وجہ آپ کو یہ بتلائیں گے. وجہ یہ کہ آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں, دو ہی جگہ ہیں نا, مضاف مضاف الیہ ہیں, تو یا تو مضاف میں سے ترخیم کریں گے یا مضاف الیہ. اگر آپ مضاف سے ترخیم کرنا چاہتے ہیں, بھئی مضاف تو کلمے کا آخر نہیں ہے, آخر تو مضاف الیہ ہے, آخر تو دیکھو یاد رکھو یہ جو مضاف ہے نا اس کا معنی مضاف الیہ کو ملائے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا. مثلا میں کہتا ہوں غلام, دنیا کے ہر غلام پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے, لیکن جب میں کہتا ہوں غلام زیدن, اس سے خاص زید کا غلام مراد ہے, اس سے خاص زید کا غلام مراد ہے, کوئی اور غلام مراد نہیں. لہذا اب میں اس سے زید کو ختم کرتا ہوں, کس کو ختم کرتا ہوں, یعنی مضاف الیہ کو میں ختم کرتا ہوں, صرف غلام رہ گیا. اب یہ غلام اس خاص غلام پہ دلالت کر رہا ہے نہیں, تو یہ معنی کے اعتبار سے مضاف کے لیے مضاف الیہ ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر اس کی دلالت ہی صحیح نہیں ہے. صرف غلام کہوں گا وہ تو عام غلاموں پر صادق آئے گا, حالانکہ میں ہر غلام کا ارادہ نہیں کر رہا بلکہ کس کا کر رہا ہوں, زید کے غلام کا. تو جب زید کے غلام کا ارادہ کر رہا ہوں تو زید کو بھی ساتھ جوڑنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ دلالت ہو ہی نہیں سکتی. توجہ ہے, تو مضاف الیہ کا اتصال ہوتا ہے کس کے ساتھ, مضاف کے ساتھ, اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں. تو یہاں دیکھو ایک مضاف ہوا, ایک مضافون الیہ. اگر آپ مضاف سے کیا کرنا چاہتے ہیں, مضاف میں ترخیم کرنا چاہتے ہیں, تو مضاف تو ابھی پورا ہی نہیں ہوا, آگے مضاف الیہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے, معنی کے اعتبار سے یہ ابھی پورا ہی نہیں ہوا جب تک مضاف الیہ ساتھ نہیں ملے گا. تو ترخیم تو آخر کلمہ سے کی جاتی ہے, درمیان کلمہ میں تو نہیں کی جاتی, تو مضاف کا آخر تو درمیان میں آ چکا ہے. بات سمجھ میں آ گئے, تو معنی کے اعتبار سے مضاف سے ترخیم ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا معنی بھی پورا ہی نہیں ہوا. اور اگر آپ مضاف الیہ سے ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو بھائی مضاف الیہ تو منادا ہی نہیں ہے, منادا تو مضاف ہے, تو معلوم ہوا نہ مضاف سے ترخیم کر سکتے ہیں نہ مضاف الیہ سے. مضاف سے کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آخر کلمہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا معنی مضاف الیہ کے بغیر پورا ہی نہیں ہے بھائی. اور اگر آپ مضاف الیہ سے ترخیم کرنا چاہتے ہیں بھائی تو مضاف الیہ تو منادا ہی نہیں ہے, منادا تو مضاف ہے بھائی, تو معلوم ہوا نہ مضاف سے ترخیم ہو سکتی اور نہ مضاف الیہ سے. کیوں, مضاف سے کرتے ہو تو رکاوٹ معنی بنے گا کیونکہ معنی اس کا پورا نہیں, اور مضاف الیہ سے کرو گے تو رکاوٹ لفظ بنے گا کیونکہ لفظوں میں تو یہ منادا ہی نہیں ہے, منادا تو مضاف ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی, دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں اذ لا یمکن الحذف من الاول, اس لیے کیونکہ ممکن نہیں ہے پہلے سے حذف کرنا, یعنی مضاف سے حذف ممکن نہیں ہے. لانه ليس آخر اجزاء المنادى, اس لیے کیونکہ یہ منادا کے اجزاء کا آخر نہیں ہے. نظرا الى المعنى, کس کی طرف نظر کرتے ہوئے, معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے, معنی کے اعتبار سے تو مضاف الیہ ملے گا پھر اس مضاف کا معنی پورا ہوگا. ولا من الثانی, اور ثانی یعنی مضاف الیہ سے بھی آپ ترخیم نہیں کر سکتے. لانه ليس آخر اجزائه, اس لیے کیونکہ یہ منادا کا آخری جز نہیں. نظرا الى اللفظ, کس کی طرف نظر کرتے ہوئے, لفظوں کی طرف نظر کرتے ہوئے, بلکہ یہ تو مضاف الیہ ہے, یہ تو مضاف الیہ ہے اور منادا تو مضاف ہے بھائی. فامتنع الترخيم فيهما بالكليه, تو ممتنع ہو گئی ترخیم ان دونوں کے اندر بالکلیتی, پورے طور پر, یعنی کسی سے بھی ترخیم نہیں کر سکتے نہ مضاف سے اور نہ مضاف الیہ سے. آگے دیکھیے وان لا يكون مستغاثا, اور دوسری عدمی شرط یہ ہے کہ وہ منادا مستغاث نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں. بھئی کیا وجہ ہے مستغاث کیوں نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ندا کے دو اثر ہیں, निदा से कलीमे में जो मुनादा है उसके अंदर दो चीजों में से एक जरूर आएगी, या तो उसके अंदर नसब आएगा या उसके अंदर बिना आएगी। आपने पढ़ा है मुनादा मुफरत मारिफा, तो वो मबनी होता है जम्मा पर, देखा, या तो लफ्ज मबनी बन जाता है निदा की वजह से, या उसमें नसब आता है अगर मुजाफ या मुशाबे मुजाफ या नकेरा गैर मुआया ना हो, या अब्दल्लाह देखो नसब आया, या तालियान जबलन देखो नसब आया, और या रजुलन खुजबी यदि जब अंधा किसी गैर मुआयन को कहे तो देखो नसब आया। तो निदा की दो अलामतें हैं, दो असर हैं, निदा के दो असर हैं, या तो कलीमे में वो मुनादा में क्या आएगी बिना, यानी वो मबनी बनेगा मबनी अल अज़म, या उसके अंदर क्या आएगा नसब आएगा। मबनी क्यों बनता है, क्योंकि वो काफ जमीर की जगह आया है, मुखातब है ना, और मुखातब के लिए तो जमीर इस्तेमाल करते हैं, नाम नहीं इस्तेमाल करते। और नसब क्यों आता है मुनादा पर, क्योंकि वो दरअसल मफूल भी ही है अदऊ के लिए भाई। तो निदा के कितने असर, दो, कौन कौन से, या तो बिना है मबनी होना, मबनी होना, और दूसरा क्या नसब है, और मुस्तगास में दोनों में से एक भी नहीं है। इसमें जब निदा का असर नहीं आया, और तरखीम तो किसकी खसूसियत है, मुनादा की, आम कलाम में तरखीम सिर्फ किस में जायज है, मुनादा में जायज है, किसी और इसम में तरखीम जायज नहीं आम कलाम के अंदर। तो जब मुस्तगास में निदा का असर जाहिर ही नहीं हुआ तो फिर उसमें तरखीम आप कैसे करेंगे, वो तरखीम वो तो मुनादा के साथ खास है, तरखीम किसके साथ खास, आम कलाम में मुनादा के साथ खास है, और मुस्तगास में, मुस्तगास में निदा का असर ही नहीं आया, जब निदा का असर ही नहीं आया तो मुनादा के साथ जो एक चीज खास थी वो यहां आप लागू नहीं कर सकते भाई। किस तरह इसमें निदा का असर नहीं है, देखो मुस्तगास, मुस्तगास में आपने पढ़ा एक तो उस पर लाम कभी ले आते हैं, या लज़ैदिन, जब या लज़ैदिन, ये जैद कौन है मुस्तगास, ये मबनी है, ये तो मौरब है, लाम जा रहा है इस पर दाखिल है, जर दे रहा है, और क्या इस पर नसब है, नहीं, या लज़ैदिन, ये जैद पर ना नसब है ना ये मबनी है भाई। निदा के तो दो ही असर थे, या लफ्ज को क्या वो मुनादा को क्या बनाता है मबनी, या उस पर क्या लाता है नसब, और ये जो या लज़ैदिन, यहां ना नसब आया और ना ये मबनी है। दूसरा मुस्तगास कौन था जिसके आखिर में अलिफ आता था, या जैदा, ये क्या है, ये मबनी अल फता है, ये मबनी अल फता है भाई, इसमें तो निदा का असर है, ये तो ये भी तो मबनी है ना। तो जवाब ये कि भाई ये जो मबनी अल फता हुआ ये निदा की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके आखिर में अलिफ आ गया, और अलिफ अपने से मकबल क्या चाहता है, फतहा चाहता है, तो ये अलिफ की वजह से मबनी हुआ है। और नीस दूसरी वजह दूसरी जिक्र करेंगे मुस्तगास बिल अलिफ में, ये दूसरी वजह जिक्र करेंगे कि मुस्तगास बिल अलिफ में तो अलिफ को साथ मिलाते हैं ताकि आवाज लंबी हो जाए, भाई एक शख्स तकलीफ में है, दुख में है, गम में है, आप उसकी मदद के लिए किसी दूसरे को आवाज देना चाहते हैं, तवज्जो है, अमर तकलीफ में है, कौन, मैं उसके लिए जैद को निदा देता हूं, या जैदा, तो देखो इसमें तो मुस्तगास के साथ अलिफ को मिलाया जाता है ताकि आवाज लंबी हो जाए, क्योंकि इजहार दुख करना है, फरियाद करनी है, बल्कि इसके साथ आपने पढ़ा कभी हा भी मिलाते हैं, या जईदाह, क्यों मिलाते हैं आवाज, ताकि और लंबी हो जाए भाई, तो इसमें तो आवाज को लंबा करना मकसूद है, और तरखीम तो इसकी जिद है, तरखीम में तो हजफ किया जाता है। तो लिहाजा वो मुस्तगास जिस पर लाम दाखिल है उसमें निदा का असर नहीं आया, ना वो मबनी हुआ और ना उस पर फतहा, लिहाजा वो चीज जो खास थी मुनादा के अंदर वो इस पर लागू नहीं हो सकती। और नीज वो मुस्तगास जो अलिफ के साथ है तो उसमें तो अलिफ को साथ इसलिए बढ़ाया ताकि आवाज लंबी हो जाए भाई, आवाज तो अगर हजफ करेंगे तो ये तो उसकी जिद बन जाएगा भाई, एक तरफ मकसद है आवाज को लंबा करना और दूसरी तरफ आप हजफ भी कर रहे हैं भाई, बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर कहते हैं, वह अल्लाह यकूना मुस्तगासन, और वो मुनादा मुस्तगास नहीं होना चाहिए, ला मजरूरन बिल लामी, मुस्तगास दो थे ना, एक मजरूर बिल लाम है और एक जिसके आखिर में अलिफ है यानी वो मबनी अल फता है, तो दोनों को अलग अलग जिक्र करेंगे। कहते हैं कि वो मुनादा को मुस्तगास नहीं होना चाहिए, ला मजरूरन बिल लामी, ना तो वो मुस्तगास हो जो मजरूर बिल लाम है, लिआदमी जुहूरी असर निदा इफी ही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर निदा का असर जाहिर नहीं। भाई इस निदा का असर क्या है, बिना नस्ब अविल बिनाई, यानी नस्ब या मबनी होना। फलम यरिद अलैहि तरखीमुल्लज़ी हुआ मिन खसाइसिल मुनादा, लिहाजा इस पर वारिद नहीं होगी, इस पर दाखिल नहीं होगी वो तरखीम जो मुनादा के खसूसियात में से है। जब इस पर निदा का असर नहीं जाहिर हुआ तो मुनादा की खसूसियात में से तरखीम भी इस पर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें निदा का असर ही नहीं। वला मफ्तूहन, और नीज वो मुस्तगास मफ्तूह भी नहीं होना चाहिए, बिज्यादतिल अलिफी, किसके साथ, अलिफ की ज्यादती के साथ, लिअन्न ज्यादता तुनाफिल हज़्फा, इसलिए क्योंकि ज्यादती वो तो मुनाफी है हज़्फ के, मुस्तगास के आखिर में तो अलिफ को ज्यादा किया गया है और आप हज़्फ करेंगे, ये तो उस ज्यादती के मुनाफी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की जिद हैं। भाई बात समझ में आ गई, ये माना है लिअन्न ज्यादता तुनाफिल हज़्फा, इसलिए क्योंकि ज्यादती जो है वो हज़्फ के मुनाफी है। वलम यज़कुरिल मंदूबा, जी भाई साहिब काफिया ने क्या कहा कि वो मुनादा जिसमें आप तरखीम करना चाहते हैं वो मुजाफ भी नहीं होना चाहिए, मुस्तगास भी नहीं होना चाहिए और जुमला भी नहीं होना चाहिए। भाई मंदूब को जिक्र नहीं किया, हालांकि और उलमा ने मंदूब को भी जिक्र किया है कि जिस मुनादा में आप तरखीम करना चाहते हैं वो मंदूब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बतलाया था कि मंदूब वो है जिस पर रोया जाए, इजहार गम किया जाए। अरब के हां कोई मर जाता उस पर रोते मातम करते, मसलन जैद मर गया है तो मातम करते और उसको पुकारते या जैदो, और कभी वा भी साथ जोड़ देते वा जैदो, तो जिस पर रोया जाए और इजहार गम किया जाए उसको क्या कहते हैं, मंदूब। तो मंदूब को भी जिक्र करना चाहिए था साहिब काफिया को कि वह मुनादा जिसमें आप तरखीम करना चाहते हैं वो मुजाफ भी ना हो, मुस्तगास भी ना हो, जुमला भी ना हो और मंदूब भी ना हो, तो साहिब काफिया ने मंदूब की शर्त क्यों नहीं लगाई भाई कि वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात पहले गुजर चुकी है, जहां मुनादा की बहस शुरू हुई थी वहां बतलाया था कि साहिब काफिया के नजदीक मंदूब मुनादा है ही नहीं, क्योंकि मुनादा उसको कहते हैं जिसकी तवज्जो मतलूब होती है, जिसको निदा किस लिए दी जाती है उसकी तवज्जो मतलूब है, और मंदूब तो मर चुका है उसकी कोई तवज्जो मतलूब नहीं है, सिर्फ इजहार गम के तौर पर या जैदू कहा जा रहा है, उसकी तवज्जो मतलूब नहीं। जब तवज्जो मतलूब नहीं तो मुनादा नहीं, तो मुनादा में दाखिल ही नहीं है, तो उसको खारिज करने की क्या जरूरत है। चुनाचे आखिर में मुनादा की बहस के बाद मंदूब को अलग जिक्र करते हैं साहिब काफिया, जबकि आम उलमा नहव के नजदीक मंदूब वो मुनादा में दाखिल है, चुनाचे वो फिर कैद लगाते हैं कि मंदूब भी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वलम यज़कुरिल मंदूबा, और साहिब काफिया ने मंदूब को जिक्र नहीं फरमाया, लिअन्नहु गैरु दाखिलिन फिल मुनादा इंदहु, इसलिए क्योंकि उनके नजदीक मंदूब जो है मुनादा के अंदर दाखिल नहीं है। वमा वका फी बाज़ नुस्ख फका अन्नहु मिन तसर्रुफिन नासिखीना, भाई काफिया के बाज़ नुस्खों में यह लफ्ज है, वला मंदूबन, काफिया के बाद नुस्खों में ये लफज मिलते हैं। तो साहिब जामी बतला रहे हैं कि भाई ये लिखने वालों से गलती हुई है, क्योंकि साहिब काफिया के नजदीक तो मंदूब दाखिल ही नहीं है, मुनादा में निकाला तो उसको जाता है जो दाखिल हो भाई, लिहाजा ये किसी लिखने वाले के तसर्रुफ है, लिखने वालों से गलती हुई है, उन्होंने तसर्रुफ किया है, उन्होंने तब्दीली की है। तो कहते हैं वमा वका फी बाज़ नुस्खी, और वो जो बाज़ काफिये के नुस्खों में वाके हुआ है यानी उनमें जो आया है, वला मंदूबन फका अन्नहु मिन तसर्रुफिन नासिखीना, गोया के वो तसर्रुफ है लिखने वालों का, नासिखीन लिखने वाले, मा अन्न वजह इश्तिराती ही इंदा दुखूली ही फिल मुनादा जाहिरुन, साथ इसके कहते हैं अगर मंदूब मुनादा में दाखिल होता, अगर मंदूब मुनादा में दाखिल होता तो फिर तो इसकी शर्त लगाना जाहिर था कि इसकी भी शर्त लगानी चाहिए, क्यों, क्योंकि मंदूब के अंदर भी आखिर में अलिफ मिलाकर आवाज को लंबा करते हैं, तवज्जो है, तो जब वहां आवाज को लंबा करना मकसूद है तो हजफ तो उसके खिलाफ हो जाएगा, उसके मुनाफी है भाई, इसलिए मंदूब के अंदर भी तरखीम जायज नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं मा अन्ना वजह तेराती ही साथ इसके कि उसकी शर्त लगाना, उसके शर्त लगाने की वजह किसके, मंदूब के शर्त लगाने की वजह इंद दुखूल ही फिल मुनादा, जिस वक्त वो मुनादा में दाखिल हो, मंदूब जिस वक्त मुनादा में दाखिल हो तो उस वक्त उसकी शर्त लगाने की वजह जाहिर, वो जाहिर है भाई। इधर फिर सुनो, यहां तर्जमा जरा मुश्किल है, कहना यह चाहते हैं अगर मंदूब दाखिल होता तो इसकी भी शर्त लगाने की वजह जाहिर थी, इसकी भी शर्त लगानी चाहिए थी, ये माना है। मा अन वजह तेराती ही, बावजूद इसके कि मंदूब के शर्त लगाने की जो वजह है, मंदूब के शर्त लगाने की वजह जाहिरुन, ये जाहिर है, कब, इंद दुखूल ही फिल मुनादा, जिस वक्त ये मुनादा में दाखिल होता तो उस वक्त उसके शर्त लगाने की वजह जाहिर है भाई। वो क्या वजह है, क्यों लगानी चाहिए थी, कहते हैं वह हुआ अन्नल अगलबा फी ही ज्यादतुल अलिफी फी आखिरी ही, और वो ये कि इसके अंदर ज्यादा गालिब जो है मंदूब के अंदर वो अलिफ को बढ़ाना है, फी आखिर ही उसके आखिर में, लिमद सौती आवाज को लंबा करने के लिए, इजहारन लितफज्जुई गम का इजहार करने के लिए। अगर मंदूब भी दाखिल होता तो इसकी शर्त लगाने की वजह जाहिर थी कि ज्यादातर मंदूब के आखिर में क्या किया जाता है, अलिफ को बढ़ाया जाता है ताकि आवाज लंबी हो जाए, खूब अच्छी तरह गम का इजहार हो जाए, तो फिर लिहाजा इस सूरत में लगानी चाहिए थी अगर यह दाखिल होता, लेकिन यह दाखिल नहीं है। तो कहते हैं वह हुआ अन्नल अगला बफी ही ज्यादतुल अलिफी, और वो ये कि ज्यादातर गालिब जो है मंदूब के अंदर वो अलिफ को ज्यादा करना है, फी आखिर ही उस मंदूब के आखिर में, लिमत दिस सौती आवाज को लंबा करने के लिए, इजहार लितफज्जुई गम का इजहार करने के लिए, तफज्जु गम ज़दा होना, दुखी होना, फला युनासिबुहु तरखीमु लितख्फीफ, लिहाजा मंदूब के मुनासिब वो तरखीम नहीं है लितख्फीफ, जो किस लिए की जाती है, तख्फीफ के लिए, क्योंकि मंदूब के अंदर तो आवाज को लंबा करना मकसद है भाई। आगे देखिए वह अल्लाह यकून जुमलतन, और नीज वो मुनादा जो है वो जुमला नहीं होना चाहिए, ले अन्नल जुमलता महकियतुन बिहालिहा, इसलिए क्योंकि जुमला जो है वो हिकायत बयान करता है, लिहालिहा अपने हाल की, जुमला हिकायत बयान करता है अपने हाल की, फला तो गैयरू, लिहाजा उसको बदला नहीं जाएगा। मैंने बताया था जुमला एक खास वाक पर दलालत करता है, तअब्बता शर्रन, देखो ये नाम किसी का पड़ गया और ये उस वाक्य पर दलालत कर रहा है, अगर इसमें तब्दीली करेंगे तो फिर इस वाक्य पर दलालत फौत हो जाएगी, ये माना है। ली अन्नल जुमलता महकियतुन, जुमला जो है हिकायत करने वाला है, यानी वाक्य को बयान करने वाला है, लिहालिहा किसको, अपने हाल, ली अन्नल जुमलता महकियतुन बिहालिहा, इसलिए क्योंकि जुमला जो है अपनी हालत की हिकायत करता है, यानी उसको अपनी हालत को बयान करता है, फला तो गैयरू, लिहाजा उसको बदला नहीं जाएगा। व शर्त राबिउ अहदुल अमरैन अल वुजूदियैन, और चौथी शर्त जो है दो वजूदी चीजों में से एक का होना है, वह हुआ अन यकून अल मुनादा, और वो ये कि वो मुनादा जो है, इम्मा अलमन ज़ाइदन अला सलासति अहरुफिन, कि वो ऐसा आलम हो जो जायद हो तीन हरूफ पर, लिअन्नहु लिअलमियति ही नासबहु तख्फीफु बितरखीमी, लिअन्नहु लिअलमियति ही, इसलिए क्योंकि ये मुनादा अपने आलम होने की वजह से, नासबहु तख्फीफु बितरखीमी, मुनासिब है इसके वो तख्फीफ जो तरखीम की वजह से होती है, ये चूंकि आलम है लिहाजा इसके मुनासिब क्या है कि इसमें तख्फीफ की जाए, किसके जरिए, तरखीम के जरिए, तवज्जो है। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि आलम में तो कोई तब्दीली नहीं की जाती, आलम में तो, और आप कह रहे हैं कि आलम होना चाहिए और तीन हरूफ से जायद, तो याद रखना वो तरखीम के, वो मुनादा के अलावा है, वो मुनादा या यूं कहें तरखीम के अलावा, बाकी जगहों के अंदर आलम के अंदर तब्दीली नहीं, लेकिन तरखीम के सूरत में उसमें तख्फीफ की जाती है। कहते हैं लिअन्नहु लिअलमियति ही नासबहु तख्फीफु बितरखीमी, इसलिए क्योंकि ये जो मुनादा है ये अपने अलम होने की वजह से, इसके मुनासिब है वो तख्फीफ जो तरखीम की वजह से होती है, लिकसरती निदा इल आलमी, इसलिए क्योंकि आलम की निदा कसीर है, आलम को निदा ज्यादा दी जाती है, लिहाजा तख़फीफ होनी चाहिए। मा अन्नहु लिशोहरती ही फी मा उबकिया मिनहु दलील अला मा उल्किया, यह इबारत समझ लें। मा अन्नहु लिशोहरती ही, बावजूद इसके मशहूर होने की वजह से, फी मा उबकिया मिनहु, वो जो इसमें से बाकी छोड़ दिया गया है, दलील उन, वो दलील है, अला मा उल्किया, उस पर जो गिरा दिया गया है। अबका युकी का माना बाकी छोड़ना और अलका युल्की का माना गिरा देना यानी हटा देना। देखो मैं आवाज देना चाहता हूं हारिस को, किसको? हारिस, तो क्या कहूंगा? या हारिसु। अब मैं इसमें तरखीम करता हूं, आखिर से मैं सा को उड़ा देता हूं, सा को मैं गिरा देता हूं, तवज्जो है, तो कैसे कहूंगा? या हारी, या हारी। तो ये जो हारी है ये है मा उबकिया मिनहु, ये क्या है? हारिस में से ये बाकी छोड़ दिया गया, असल क्या था? हारिस, अब बाकी क्या छोड़ दिया गया? हारी, ये है मा उबकिया मिनहु, जो उसमें से बाकी छोड़ा गया है। और वो जो सा गिराई गई है वो है मा उल्किया मिनहु, जिसको उसे गिराया गया है, तवज्जो है। तो जो बाकी छोड़ा गया है या हारी, ये जो हारी को बाकी छोड़ा गया है ये दलील है उस पर जिसको गिरा दिया गया, यानी ये दलील है उस सा पर जिसको गिरा दिया गया। तो जो बाकी बचा है वो उस पर दलील है जिसको गिरा दिया गया। या जैसे मैं मंसूर को निदा देता हूं, या मंसु, तो बाकी क्या छोड़ा गया? मंसु, ये है मा उबकिया मिनहु। और मा उल्किया क्या है? वाव और रा, वाव और रा। तो ये जो मा बकिया है यानी मंसु, ये दलील है किस पर? वा और रा पर। इसी से वा और रा का भी पता चल रहा है, बात समझ में आ गई। ये माना है, कहते मा अन्नहु लिशोहरती ही फी मा उबकिया मिनहु, साथ इसके के मशहूर होने की वजह से, फी मा उबकिया मिनहु, वो जो उसमें से बाकी छोड़ दिया गया है, दलील उन, इसके अंदर वो जो बाकी छोड़ दिया गया है उसमें दलील उन, क्या है? दलील है, अला मा उल्किया, उस पर जिसको गिरा दिया गया है। यानी आलम होगा तो आलम तो कसीरुल इस्तेमाल है निदा के अंदर, तो आखिर से अगर आप हर्फ गिराएंगे भी तो सुनने वाले समझ जाएंगे कि फलां को निदा दी जा रही है। भाई आगे देखिए, कहते हैं वली जियादती ही अलस सलासती, और इसके तीन हरूफ पर ज्यादा होने की वजह से, लम यलजम नक्सुल इस्मी अन अकल अबनियतिल मुआरबी बिला इल्लतिन मुजिबतिन, लम यलजम लाजिम नहीं आता नक्सुल इस्मी इसम का कम होना, अन अकल अबनियतिल मुआरबी, अबनिया जमा है बिना की, बिना, बिना इमारत को भी कहते हैं और इसी तरह बिना साख्त और बनावट को भी कहते हैं, किसको? साख्त और बनावट। तो अकल अबनियतिल मुआरबी, मुआरब की बनावट की जो कम से कम मिकदार है, मुआरब की, मुआरब की साख्त कम से कम कियासन कितने हरूफ पर होनी चाहिए? तीन हरूफ पर। कियास क्या तकाजा करता है? कि मुआरब जो है उसकी साख्त कम से कम कितने हरूफ पर होनी चाहिए? तीन हरूफ पर होनी चाहिए। तो लिहाजा जब यह आलम भी होगा, आलम को निदा कसरत से दी जाती है, और नीज जब यह तीन हरूफ से ज्यादा होगा तो आखिर से जब तरखीम कर देंगे और हर्फ को उड़ा देंगे तो भी जो बाकी बचेंगे वो मौरब की बनावट में जो कम से कम मिकदार है यानी तीन हरूफ, उससे कम यह नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। तो अकल अबनियतिल मुआरब क्या तर्जमा? मुआरब की बनावट की कम से कम मिकदार, इससे मुराद है सुलासी। कम से कम कितना होना चाहिए मुआरब को? सुलासी, यानी तीन हर्फ वाला होना चाहिए। लिहाजा अकल अबनियतिल मुआरब, इसको जरा हटाओ और इसकी जगह असुलासी लगा दो। फिर देखो, कहते हैं वली ज्यादती ही अल सलासती, और उस आलम के तीन हरूफ पर जायद होने से, लम यलजम नक्सुल इस्मी, लाजिम नहीं आता कि इसम कम हो जाए, आनिस सुलासी, किससे? सुलासी से तीन हर्फ से कम हो जाए, बिला इल्लतिन मुजीबतिन, बगैर किसी ऐसी इल्लत के जो मुजीबा हो, वाजिब हो। भाई देखो, ये जो मुनादा के अंदर तरखीम की जाती है, ये वाजिब है या गैर वाजिब है? गैर वाजिब, जायज है। आपको बतलाया था वह तरखीम फिल मुनादा जायज उन, भाई जायज है, वाजिब नहीं। और ये किस लिए की जाती है? तखफीफ के लिए। और जबकि बाज औकात किसी और इल्लत की वजह से हजफ किया जाता है और वो हजफ वाजिब होता है, जैसे आसन, आसन से हमने अलिफ को गिरा दिया और ये गिराना वाजिब है भाई, क्योंकि इज्तिमाई साकिनैन जायज नहीं। इसी तरह काजिन से या गिरा दी और ये गिराना वाजिब है। और नीज ये गिराना तखफीफ के लिए था या और इल्लत मौजूद थी? और इल्लत मौजूद थी। तो यही कह रहे हैं, बिला इल्लतिन मोजिबतिन, बगैर किसी ऐसी इल्लत के, मोजिबतिन जो वाजिब हो भाई, ये जो वाजिब करने वाली हो उस हजफ को। हासिल कलाम सुनो, हासिल क्या कि मुनादा जिसमें आप तरखीम करना चाहते हैं उसमें चार शर्तें हैं, तीन आदमी एक वजूदी। आदमी क्या कि वह मुजाफ भी नहीं होना चाहिए, मुस्तगास भी नहीं होना चाहिए और जुमला भी नहीं होना चाहिए। और वजूदी शर्त क्या है? दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो वह ऐसा आलम हो जो तीन हरूफ से जायद हो, तीन हरूफ से जायद हो। आलम इसलिए क्योंकि वो कसीरुल इस्तेमाल है निदा के अंदर, और तीन हरूफ से जायद इसलिए ताकि हजफ के बाद भी इसम कम अज कम कितने हरूफ वाला हो, तीन हरूफ से कम वो ना हो भाई। अब फिर जरा तर्जमा देखें, कहते हैं वली ज़ियादती ही अला सलासती लम यल्ज़म नक्सुल इस्मी अन अकल अबनियतिल मुअरबी बिला इल्लतिन मुजिबतिन। ये बिला इल्लतिन मुजिबतिन, इसको जोड़ दें, लम यल्ज़म नक्सुल इस्मी, इसम का कम होना लाजिम नहीं आता किससे? सुलासी से, बिला इल्लतिन मुजिबतिन, बगैर किसी इल्लत मुजिबा के। बात समझ, बगैर किसी इल्लत मुजिबा के इसम का, भाई इल्लत मुजिबा हो फिर तो इसम कम हो सकता है तीन हरूफ से। जैसे आसन, आसन में कितने हरूफ हैं? आयन और स्वाद है, अलिफ तो गिर चुका है, रस्मुल खत में किताबत में आप बेशक लिखते हैं लेकिन वह गिर चुका है, तो देखो तीन से कम हो गए या नहीं हुरूफ। लेकिन तीन से हुरूफ कम क्यों हुए? किसी इल्लत मुजिबा की वजह से हुए या गैर इल्लत मुजिबा की वजह से हुए? इल्लत मुजिबा की वजह से। इल्लत मुजिबा की वजह से कोई मुअरब तीन से कम हो सकता है, लेकिन बगैर इल्लत मुजिबा के तीन से कम नहीं हो सकता। लिहाजा यहां भी तीन से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां तो इल्लत मुजिबा नहीं है। अब माना समझ में आ गया, ये माना है वली ज़ियादती ही अला सलासती, और तीन हुरूफ पर जायद होने से लम यल्ज़म नक्सुल इस्मी, लाजिम नहीं आता कि इसम कम हो जाए। अन अकल अबनियतिल मुअरबी, मुअरब की बनावट की कम से कम मिकदार से कि उससे इसम कम हो जाए। बिला इल्लतिन मुजिबतिन, बगैर किसी इल्लत मुजिबा के। व इम्मा, जी ये अब दूसरी चीज आ गई कि या तो वो आलम हो तीन हरूफ से जायद, या व इम्मा इस्मम मुतलब्बिसन बिता इतानीसी, या वो ऐसा इसम हो जो मुतलब्बिस होता है तानीस के साथ। तलब्बुस का माना ताल्लुक भाई, जुड़ना, मिलना, यानी उसके साथ क्या जुड़ी हुई हो, ताए तानीस जुड़ी हुई हो। माना समझ में आ गया? तो कहते हैं वह इम्मा इस्मन मुतलब्बिसन बिताए तानीसी, या वो ऐसा इसम हो जो मुतलब्बिस हो ताए तानीस के साथ, यानी उसके साथ ताए तानीस जुड़ी हो। वह इल्लम यकुन आलमन वला ज़ाइदन अला सलासती, अगरचे वो आलम ना हो, वला ज़ाइदन अला सलासती, और तीन हुरूफ पर जायद भी ना हो, आलम भी ना हो, तीन पर जायद भी ना हो, लेकिन कम अज कम क्या होना चाहिए? उसके साथ ताए तानीस होनी चाहिए। लिअन्न वज़अ ताए अला ज़वाली, इसलिए क्योंकि ता की वज़ा ही ज़वाल पर है। ये जो ताए तानीस है इसकी वजह ही जवाल पर है, ये कभी कलीमे के साथ जुड़ती है कभी अलग हो जाती है। जारिबुन और जारिबतुन, तो कभी ता को साथ जोड़ते हैं और कभी ता को अलग करते हैं। लिअन्न वज़अता अला ज़वाली, इसलिए क्योंकि ता की जो वजह है वो जवाल पर है। फयकफी ही अदना मुक्तज़िन लिस्सुकूती, तो काफी है इसके लिए कोई छोटा सा मुक्तज़ी लिस्सुकूत भी भाई, कोई छोटी सी चीज जो इसके साकित होने का तकाजा करे वो भी काफी है, उसकी वजह से भी ता गिर जाती है। ताकि वजह ही किस लिए है? जवाल के लिए, वो अलहदा हो जाती है। लिहाजा कोई छोटी सी भी चीज आ गई जो इसके साकित होने का तकाजा करेगी तो ये गिर जाती है। और यहां तरखीम तरखीम में तो कलीमे का जो असली जुज है वो भी गिर जाता है, तो ता तो बतरीके औला गिरेगी, ताकि वजाही किस पर है, जवाल पर है। अदना मुख्तजी लिसुकूत भी काफी है उसके जवाल के लिए। और यहां तरखीम, तरखीम में तो हर्फे असली गिर जाते हैं, जैसे या हारिसु किसको गिराया, सा को गिराया, हालांकि ये तो कलीमे का जुज था, और ता, ता तो अलग कलीमा होती है जो तानीस पर दलालत करती है, असल में है जारिबुन, असल में जारिबुन। फिर ता को जोड़ते हैं और ये ता किस पर दलालत करती है, तानीस पर, तो इसका इत्तेसाल कलीमे के साथ आता है, लेकिन बहरहाल है ये अलग कलीमा ही, जारिबुन जर्ब लगाने वाले पर दलालत कर रहा है और ता तानीस पर दलालत कर रही है। तो जब तरखीम के अंदर कलीमे का असली जुज वो गिरा देते हैं, तो ये जो अलग कलीमा है और जो और जिसकी वजह ही जवाल के लिए है, वो बतरीके औला गिर जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्ना वज़अता अला ज़वाल, इसलिए क्योंकि ता की वजह जवाल पर है, फयकफी ही अदना मुक्तज़िन लिसुकूती, तो इसके सुकूत के लिए अदना मुक्तज़ी भी काफी है, फयकफी ही अदना मुक्तज़िन लिसुकूती, तो काफी है अदना मुक्तज़ी भी लिसुकूती, इसके गिरने के लिए। फकैफ इज़ा वक़ा मौक़िअन, तो कैसे जब ये वाक़े होगी उस मकाम पर, यकसुरु फीहि सुकूतुल हर्फिल असली, जहां पर हर्फ असली का साकित होना भी कसीर है, जब ये इसकी वजाही जवाल के लिए है और अदना मुक्तज़ी भी इसके सुकूत के लिए काफी है, तो फिर कैसे जब ये उस मकाम पर वाक़े हो जहां पर हर्फ असली भी गिर जाया करता है, जैसे या हारिसु में सा गिर गई हालांकि वह हर्फ असली है भाई। तो ये माना है फकैफ इज़ा वक़ा मौक़िअन, तो पस कैसे जब ये वाक़े हो उस मकाम पर, यकसुरु फीहि सुकूतुल हर्फिल असली, कि जिसके अंदर कसीर है हर्फ असली का साकित होना, यानी तो फिर कैसे वहां नहीं गिरेगी जब बाकी जगह ये गिर जाती है। वलम युबालू बिबका इनहु, अच्छा इन्होंने क्या कहा कि उसके इसम के साथ ताए तानीस हो, भाई अगर ताए तानीस को गिराने के बाद उसके हरूफ तीन से कम रह गए, फिर जैसे सुबतुन सा है या आगे लफ्ज आ रहा है, सुबतुन सा बा और गोलता, सुबतुन जमात को कहते हैं, किसको, जमात, बिलखसूस घुड़सवारों की जो जमात है उसको सुबतुन कहते हैं। इसी तरह शातुन, शातुन आप जानते हैं भेड़ बकरी को कहते हैं, तो इनको अब निदा दी जाए तो इसे ता घिरा देंगे, ता तरखीम करते हुए क्या करेंगे, तरखीम करते हुए इनसे ता गिरा देंगे। अब सुबतुन से ता गिराई तो सा और बा दो हरूफ रह गए, शातुन से ता गिराई तो शीन और अलिफ दो हरूफ रह गए, दो हरूफ रह गए। तो आपने तो हमें क्या कहा था कि तरखीम के बाद मुनादा कम से कम कितने हरूफ पर बाकी रहना चाहिए, तीन हरूफ। कहते हैं नहीं भाई, यहां इसकी परवाह नहीं की, यहां पर इसकी परवाह नहीं की गई कि ता को गिराने के बाद वह तीन हरूफ से कम पर रह जाएगा। वजह यह कि तरखीम से पहले ही वो तीन से कम हरूफ पर मुश्तमिल है, सुबतुन, ये ता तो अलग कलीमा है, तरखीम से पहले ये तीन से कम हरूफ सा और बा है इसमें बस, और शातुन में ये ता अलग कलीमा है, शीन और अलिफ, तो तरखीम से पहले ये तीन से कम हरूफ पर मुश्तमिल है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ता को क्या शुमार करते हैं, अलग कलीमा, तो तरखीम से पहले इसके हुरूफ तीन से कम है, तो तरखीम के बाद तीन से कम रह गए तो इसमें कोई हरज नहीं, तरखीम से कोई हुरूफ तीन से कम नहीं हुए, ये पहले से ही तीन से कम थे भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वल्लम युबालू, बाला युबाली का माना परवाह करना, वल्लम युबालू और नहवियों ने परवाह नहीं की, बिबकाई नहवी सुबतिन व शातिन, के बाकी रह जाए सुबतुन और शातुन जैसा लफ्ज बाकी रह जाए, बादत तरखीम अला हरफैनी, तरखीम के बाद ये बाकी रह जाए अला हरफैनी, कितने हरूफ पर, दो हरूफ पर, लिअन्ना बकाअहू कज़ालिका लैसा लिअजलि तरखीमी, इसलिए क्योंकि इनका इस तरह बाकी रहना यानी दो हरूफ पर बाकी रहना, लैसा लिअजलि तरखीमी, ये तरखीम की वजह से नहीं है, बल मअत्ता अयज़न काना नाक़िसन अन सलासतिन, बल्कि ता के साथ भी ये तीन हरूफ से कम था, इज़िता उकलिमतुन उखरा बिरअसिहा, इसलिए क्योंकि ता जो है कलिमतुन उखरा अलग कलिमा थी, बिरअसिहा मुस्तकिलन, ता क्या थी अलग कलिमा थी, बिरअसिहा ऐ मुस्तकिलन, यानी तरखीम से पहले ता बेशक जुड़ी हुई थी लेकिन उस वक्त भी ये तीन हरूफ से कम थे क्योंकि ता तो अलग कलिमा है भाई। यह माना है इजिता उ कलिमतुन उखरा बिरासीहा, इसलिए क्योंकि ता जो है वो तो अलग मुस्तकिल कलिमा थी। आगे देखिए भाई, वला युरखमु लिगैरि जरूरतिन मुनादन लम यस्तौफी शुरूत अल मज़कूरत इल्ला मा शज़्ज़ मिन नहवी या साहिब फी या साहिबु। वला युरखमु, अब आगे बतला रहे हैं कि ये शर्तें जरूरी हैं भाई, जिस मुनादा में ये शर्तें पूरी होंगी तो उसी में तरखीम की जाती है, और इसके अलावा बाकी जिसमें ये शर्तें पूरी ना हो उनमें तरखीम नहीं की जाती, इल्ला जरूरत शायरी की वजह से। किसकी वजह से? हां, जरूरत शायरी की वजह से बाज़ औक़ात शर्तें पूरी ना हो फिर भी तरखीम की जा सकती है, लेकिन आम कलाम के अंदर ये शर्तें पूरी होंगी तो फिर उसके बाद ही तरखीम जायज है मुनादा के अंदर भाई। तो कहते हैं वला युरखमु लिगैरि जरूरतिन, और तरखीम नहीं की जाती बगैर जरूरत के, यानी जरूरत शेरी के तरखीम नहीं की जाती मुनादन, ऐसे मुनादा में। मुनादन नकेरा है और लम यस्तौफी शुरूत अल मज़कूरत, ये जुमला आया यानी फेल आया तो ये उसके लिए सिफत बनेगा, और इस्तौफा यस्तौफी इसका माना पूरा करना, लम यस्तौफी शुरूतल मस्कूरा, जिसमें ये मस्कूरा शर्तें पूरी ना हो। तो कहते हैं वला युरखमु लिगैरि जरूरतिन, और तरखीम नहीं की जाएगी बगैर जरूरत के मुनादन, ऐसे मुनादा में लम यस्तौफी शुरूतल मस्कूरा, जिसमें पूरी ना हो मस्कूरा शर्तें, इल्ला मा शज़्ज़ा मगर वो जो शाज हो, मिन नहवी या साही, जैसे कि या साही है फी या साहिबु, किसके अंदर? या साहिबु, देखो या साहिबु, साहिब का माना साथी, या साहिबु ए साथी, ये अरबी जुबान में कसीरुल इस्तेमाल है, लिहाजा इसमें तरखीम करते हैं और क्या कहते हैं? या साही। बात समझ में आ रही? हालांकि न ये अलम है और न इसके साथ ता जुड़ी हुई है, अलम होता तो फिर इसको तीन से जायद होना चाहिए था, लेकिन ये अलम भी नहीं है और इसके साथ ताए तानीस भी जुड़ी हुई नहीं है, तो इसमें तरखीम की जाती है, और ये शाज है, ये शाज है, यानी इन शर्तों के अलावा कहीं तरखीम हो जाए वो अरबी जुबान में शाज है, जैसे या साही के अंदर है, और फिर इसके अंदर भी जो तरखीम की जाती है उसकी वजह भी मैंने बतला दी, क्योंकि ये कसीरुल इस्तेमाल है भाई। तो कहते हैं इल्ला मा शज़्ज़ा मगर वो जो शाज हो, मिन नहवी या साही, जैसे कि या साही है फी या साहिबु, व मा शुज़ूज़िही, और बावजूद इसके शाज होने के, फल वजहु फी तरखीमिही, तो वजह जो है सबब जो है फी तरखीमिही, इसके इसकी तरखीम के अंदर, कसरत इस्तेमालिही मुनादन, वो इसको कसरत से इस्तेमाल करना है बतौर मुनादा के, वो कसरत से इसको बतौर मुनादा के इस्तेमाल करना है। आगे देखिए, वलम्मा फरगा मिन बयानी शराइति तरखीमी शराफी बयानी कमियतिल महजूफी बिसबबिही। जी, अब तरखीम कितनी करेंगे, अब उसकी मिकदार बयान करने लगे हैं। पहले तरखीम की तारीफ की, उसके बाद तरखीम की शराइत बयान की, और उसके बाद अब तरखीम की मिकदार बयान करने लगे हैं। याद रखना, तरखीम जो है वो मिकदार के एतबार से तीन किस्म पर है तरखीम भाई। कभी कभार मुनादा के आखिर से सिर्फ एक हर्फ को गिराया जाएगा, और कभी कभार मुनादा के आखिर से दो हरूफ गिराए जाएंगे, और कभी कभार मुनादा के आखिर से पूरा कलीमा गिरा देंगे जब वो मुरक्कब हो, जब वो मुरक्कब हो। मसलन एक आदमी का नाम ही खमसता आशारा रख दिया है, अब इसके अंदर तरखीम करते हैं तो ये खमसता आशारा मुरक्कब है तो आखिर से आशारा पूरा कलीमा उड़ा दिया, पूरा कलीमा गिरा देते हैं, और कैसे कहते हैं? या खमसता या खमसतु, इस तरह निदा देंगे। और इसी तरह जैसे बाला बक्का, बाला बक्का, देखो बाल अलग कलिमा था और बक्कून अलग कलिमा था, और इनको मिलाया और मुरक्कबे मना सर्फ बन गया, तो इसके अंदर तरखीम करेंगे तो दूसरा कलिमा जो बक्कून है उसको खत्म कर देंगे, गिरा देंगे, और कैसे कहेंगे? या बाला या बालू। तो तरखीम मिकदार के एतबार से कितनी किस्म पर? तीन किस्म पर, कभी एक हर्फ आखिर से गिराएंगे, कभी दो हरूफ, और कभी पूरा कलिमा गिराएंगे भाई। जी पहले मतन मतन देख लें, कहते हैं फइन कान फी आखिरी ही ज्यादतानी फी हुक्मिल वाहिदती, अगर उस मुनादा के आखिर में दो ऐसी ज्यादतियां हैं यानी ऐसे दो हरूफ जायद हैं फी हुक्मिल वाहिदती जो किसके हुक्म में है, वो दोनों एक के हुक्म में है, दोनों एक ज्यादती के हुक्म में है, का अस्मा जैसे अस्मा है वह मरवान और जैसे मरवान है। भाई याद रखो बाज औकात किसी लफ्ज के आखिर में जायद हरूफ होते हैं और बाज औकात ऐसे दो जायद हरूफ होते हैं जिनको इकट्ठा बढ़ाया जाता है, बाज औकात जो ज्यादती की जाती है वो दो हरूफ को इकट्ठा बढ़ाया जाता है, यह माना नहीं कि दोनों एक ही माना के लिए हों, अलग अलग मानी के लिए भी हो सकते हैं लेकिन बढ़ाया इकट्ठा ही जाता है। जैसे आप जानते हैं कि तस्निया बनाते हुए अलिफ और नून को इकट्ठा बढ़ाते हैं, रजुलानी या रजुलैनी या और नून इकट्ठे हैं, या जमा मुजक्कर सालिम में वो और नून को इकट्ठा बढ़ाते हैं मुस्लिमून, तवज्जो है। और जैसे अलिफ नून मजीदतान गैर मुनसरिफ में आपने पढ़े भाई, जैसे मरवान भाई इसके अंदर देखो अलिफ नून मजीदतान है, इनको इकट्ठा बढ़ाया जाता है। इसी तरह आपने पढ़ा है तानीस के दो अलिफ हैं, एक अलिफ मकसूरा एक अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा आम अलिफ को कहते हैं, अलिफ ममदूदा के अलिफ के बाद हमजा भी आए, अलिफ के बाद इसमें ये जो तो ये जो अलिफ ममदूदा है ये दर असल दो अलिफ हैं भाई, कितने हैं दो अलिफ, और ये जो इनमें से जो दूसरा है उसको फिर हमजा से बदलते हैं, जैसे हमरा अहमर की मुअन्नस क्या है हमराओ, ये जो हमजा है ना ये भी अलिफ था, ये तो ये दोनों अलिफ इकट्ठे बढ़ाए जाते हैं और इनमें से जो दूसरा है ये है तानीस के लिए, दोनों अलिफ तानीस के लिए नहीं बढ़ाए, तानीस के लिए ये दूसरा अलिफ बढ़ाया है, पहला अलिफ वैसे जायद किया और दूसरा तानीस के लिए है और फिर इस तानीस वाले को हमजा से बदल देते हैं। तो या हमराओ इसमें अलिफ ममदूदा है और अलिफ ममदूदा दरअसल कितने अलिफ होते हैं दो, और इनमें से एक तानीस के लिए है दूसरा तानीस के लिए नहीं, तो देखो इनको इकट्ठा ही बढ़ाया जाता है, जब भी बढ़ाना है इकट्ठे ही। इसी तरह कभी कभार या मुशद्दद मिलाते हैं किसी इसम के आखिर में उसको इसमें मंसूब बनाने के लिए, जैसे लाहौरियन क्या माना लाहौर वाला, तो देखो ये या मुशद्दद दरअसल दो या है जिनको इकट्ठा बढ़ाया जाता है। तो जहां पर भी ऐसे दो जायद हरूफ हों जिनको जो एक के हुक्म में है, एक के हुक्म में होने का क्या माना कि दोनों को इकट्ठा बढ़ाया जाता है, यह माना नहीं कि दोनों का माना एक हो, नहीं माना अलग भी हो सकता है, एक एक मकसद के लिए लाया जाए दूसरा दूसरे मकसद, जैसे तस्निया और जमा इसमें अलिफ नून और वाव नून बढ़ाते हैं और ये जो नून है ये कायम मकाम तनवीन के है भाई, बात समझ, अलिफ तो तस्निया बनाने के लिए बढ़ाया और ये नून किस लिए बढ़ाया, जो मुफरद में तनवीन थी उसके इवज इसमें क्या दे दिया नून दिया। इसी तरह मुस्लिमून ये वाव किस लिए है जमा के लिए और नून किस लिए बढ़ाया ये वो तनवीन का इवज है भाई, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा ये जरूरी नहीं कि दोनों एक ही माना के लिए बढ़ाए गए हों, हां बढ़ाए इकट्ठे ही जाते हैं, तो इनके बारे में कहेंगे ये ऐसी ज्यादती है जो एक के हुक्म में है यानी इनको इकट्ठा बढ़ाया जाता है। तो कहते हैं फइन कान फी आखिरी ही ज्यादतानी, अगर उस मुनादा के आखिर में दो ऐसी ज्यादतियां हैं फी हुक्मिल वाहिदती जो एक ज्यादती के हुक्म में हैं, का अस्मा जैसे अस्मा, देखो इसमें अलिफ ममदूदा बढ़ाया है तानीस के लिए, तो ये अलिफ और हमजा दोनों को इकट्ठा बढ़ाया गया, तो ये अस्मा ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि आपने पढ़ा है कि तानीस के जो दो अलिफ हैं ये दो सबबों के कायम मकाम हैं। वह मरवाना देखो इसमें अलिफ नून मजीदा तान भी हैं और ये आलम भी है तो ये गैर मुनसरिफ है। तो कहते हैं का अस्मा व मरवाना औ हर्फ उन सही उन कबलहू मद्दतुन, या उस मुनादा के आखिर में ऐसा हर्फ सही हो कबलहू मद्दतुन जिसे पहले हर्फ मद्दा हो, जैसे मंसूर भाई देखो मंसूर के आखिर में, मंसूर के आखिर में हर्फ सही है रा, हर्फ सही असली है और उससे माकबल वो जायदा है, तवज्जो है वो जायदा है। तो कहते हैं या उसके आखिर में ऐसा हरफ सही हो, कबलहु मद्दतुन, जिससे माकबल में हरफ मद्दा हो, वह हुआ अक्सरु मिन अरबातीन, इस हाल में कि यह चार हुरूफ से ज्यादा हो। यह मुनादा जिसके आखिर में क्या आया हरफ सही और माकबल में क्या है हरफ मद्दा, यह चार हुरूफ से जायद होना चाहिए क्योंकि इन दोनों हुरूफ को हमने गिराना है, तो जब दोनों गिर जाएं तो जब चार से जायद यानी पांच हुरूफ पर कम अज कम मुश्तमिल होगा, तो दो को गिराने के बाद भी कम अज कम कितने रह जाएंगे, तीन हुरूफ रह जाएंगे, यानी सुलासी कम अज कम रह जाएगा इसम, यानी मौरब की जो कम से कम बिना जिस पर हो वो। तो कहते हैं वह हुआ अक्सर मिन अरबातिन, इस हाल में कि ये जो है चार से ज्यादा हुरूफ पर मुश्तमिल हो, तो हुजीफा ता, तो इन दोनों को इकट्ठा हजफ कर लेंगे। ये जो दो हुरूफ जायद हैं जो एक के हुक्म में है, ये या इसी तरह वो हरफ सही जिसे माकबल हरफ मद्दा है, तो हरफ सही और मद्दा दोनों को इकट्ठा हजफ कर लेंगे। तो या मंसूर, उसमें निदा कैसे देंगे, या मंसु और या अम्मारु, इसमें निदा कैसे देंगे, या अम्मा या अम्मु, अलिफ और रा दोनों गिरा देंगे, और या अस्माउ इसमें निदा कैसे देंगे, या अस्मा या अस्मु, या मरवाना इसमें निदा कैसे देंगे, या मरवा या मरव, ये जब तरखीम करेंगे, वैसे तो पूरा भी जिक्र कर सकते हैं और तरखीम भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए बाकी फिर अगले सबक में, चलिए बस बेहदा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।